आप सभी कल से इस ज्ञान सरोवर के कॉम्प्लेक्स में ज्ञान शांति शक्ति प्रेम आनंद का अनुभव तो कर ही रहे हैं। हम ऑफिशियली आज इस उद्घाटन सत्र में भी आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैं निवेदन करती हूँ हमारे सभी ऑनर्ड गेस्ट्स जो भी आए हैं, हमारे अतिथि महोदय, उन सभी का तो धन्यवाद भी करती हूँ, स्वागत भी करती हूँ। साथ साथ इस कार्यक्रम के हमारे विशेष अनुभवी अतिथियों का मंच पर मैं स्वागत करती हूँ, निवेदन करती हूँ आने के लिए। प्रथमतः हरीश शुक्ला जी, पांड्यमणि जी, प्रोफेसर एस ए कोरी जी, डॉक्टर मनप्रीत सिंह मन्ना जी, राजयोगिनी बी के शुक्ला जी, प्रोफेसर पंकज एल जानी जी, राजयोगी बी के मृत्युंजय जी, प्रोफेसर वेद प्रकाश जी, प्रोफेसर एम जगदीश कुमार, राजयोगी बी के निर्वैर जी, भ्राता मेहरचंद जी, आप प्लीज मंच पर आए और अपने स्थान पर उपस्थित हो जाए। फिर हम 3 मिनट पिता परमात्मा का भी स्वागत करेंगे तथा याद करेंगे पिता परमात्मा की याद में। फिर से मैं निवेदन करूंगी, हरीश शुक्ला जी, पांड्यमणि जी, एस ए कोरी जी, मनप्रीत सिंह मन्ना जी, शुक्ला दीदी जी, पंकज एल जानी जी, भ्राता मृत्युंजय जी, वेद प्रकाश जी, जगदीश कुमार जी, भ्राता निर्वैर जी तथा मेहरचंद जी, प्लीज अपना स्थान ग्रहण कीजिए मंच पर। 3 मिनट हम सभी पिता परमात्मा को याद करेंगे। अनुभवी वक्ताओं का स्वागत करने ब्रह्मा कुमारी बहनों से गुलदस्ता तथा पैचेस द्वारा। साथ साथ मैं निवेदन करती हूँ ब्राथा बीके नितिन जी से आप सभी के स्वागत में एक सुंदर गीत प्रस्तुत करने, ब्राथा नितिन जी। चलो ठीक है, एक सुंदर नृत्य प्रस्तुत करेगी कुमारी खुशहाली जो अहमदाबाद से आई है। निवेदन करती हूँ आप सबकी ओर से कुमारी खुशहाली। धन्यवाद कुमारी खुशाली का, बहुत सुंदर नृत्य प्रस्तुत करके हम सभी का स्वागत किया है इस उद्घाटन सत्र में। अभी मैं निवेदन करती हूँ डॉक्टर बीके हरीश शुक्ला जी से, हम सभी का स्वागत करेंगे आप शब्द सुमनों से। आप हमारे एजुकेशन विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, करीब 40 साल से आप इस राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं। आपकी पूरी फैमिली ईश्वरीय संदेश देने की सेवा में तत्पर रहती है, इसलिए विशेष आप सबकी ओर से उनका स्वागत भी करती हूँ, निवेदन भी करती हूँ हम सभी का स्वागत करने।
ओम शांति। परमपिता परमात्मा श्री बाबा मंचस्थ सभी महानुभाव और सभा में उपस्थित सभी शिक्षाविद भाई और बहनों, आपका इस स्वागत सत्र में, उद्घाटन सत्र में आपका विशेष अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। विशेष करके आज सभा पर, मंच पर बड़े बड़े महानुभाव, विश्व की बड़ी हस्तियां के हैं, विराजमान हैं। सर्वप्रथम हमारी दादी जानकी जी, जो इस संस्था की चीफ हैं, अभी कुछ क्षणों में, थोड़ी देर में पधारेंगी। दादी एक ऐसी हस्ती हैं जो सारे विश्व के लिए पूजनीय हैं। उनका व्यक्तित्व और उनकी ज्ञान वाग्धारा सचमुच आत्माओं को उड़ाने लगती है। आज पुरुषार्थ के क्षेत्र में कहूं मैं तो, इस संस्था को तो आप लोग जानते ही हैं, एक विश्व के तख्ते पर, विश्व मंच पर एक स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी के रूप में प्रख्यात है। एकमात्र ये आध्यात्मिक संस्था है जो अध्यात्म की और चरित्र की शिक्षा देती है। तो ऐसी संस्था की 101 वर्षीय दादी जानकी जी आज लगभग 135 देशों में लगभग 8000 से भी अधिक सेंटरों का संचालन कर रही हैं। तो इस मौके पर मैं दादी जी को आप सबकी ओर से नमन करता हूं। और एक बात दादी के संदर्भ में ये कहूंगा मैं कि महर्षि अरविंद ने अपने सावित्री महाकाव्य में कहा था कि वन मैन्स परफेक्शन स्टिल सेव द वर्ल्ड। दुनिया किस तरफ जा रही है ये तो आप देख ही रहे हैं आज, और इस विश्व को बचाना है तो कैसे बचेगा? धनबल, जनबल, भुजबल से विश्व महान नहीं बनता, अतः भारत भी महान नहीं बनता। महान बनता है चरित्र बल से। तो चरित्र की शिक्षा, और उसके लिए चाहिए आध्यात्मिकता में वैल्यूज और स्पिरिचुअलिटी की संपन्नता, ये परफेक्शन। तो ऐसी परफेक्ट आत्मा जो अशरीरी होकर के कहीं भी उड़ सकती है, पहले इस सृष्टि पर ब्रह्मा बाबा ने ये कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किया, उसके बाद हमारी दादी प्रकाशमणी जी और अभी दादी जानकी भी अंतर्भाग शरीर से भी आज और बहुत बड़ी सेवाएं कर रही हैं। आज ये अशरीरी बनना, आत्मावान बनना और आत्मा के भाव में जीना, परमात्मा के साथ एक लिंक लगा करके, ये कार्य हमारी दादी जी आज सारे विश्व के अंदर कर रही हैं। तो उन दादी जी से मिलने का एक बहुत बड़ा सौभाग्य आप लोगों को प्राप्त होगा। फिर दूसरे नंबर पर हमारे भ्राता निर्वेर जी, वो भी अभी थोड़े समय में उपस्थित होंगे, जो इस संस्था के महामंत्री, सेक्रेटरी जनरल और एजुकेशन विंग के चेयरपर्सन हैं। उनका भी ऐसा ही, कितने सरल शांत और फिर भी उस परमात्मा के साथ रमण करती हुई एक दिव्य व्यक्तित्व उनका हमेशा नजर आता है। तो ऐसी आत्मा से भी आपके दर्शन होंगे, उनकी वाग्धारा भी सुनेंगे आप लोग, मार्गदर्शन भी पाएंगे, इसलिए सचमुच आप सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं। और तीसरे नंबर पर हमारे ब्राता मृत्युंजय जी, जो इस एजुकेशन विंग के, ये विंग कब आप लोगों ने भी देखा सारा, उसमें एजुकेशन विंग एक सभी विंगों की एक प्रमुख और फाउंडेशन विंग है, ऐसा कहें तो अत्युक्ति नहीं है। क्योंकि एजुकेशन से ही कोई डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, कोई व्यापारी बनता है, बिजनेसमैन बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, समाज के जितने भी वर्ग हैं सभी वर्ग के व्यक्ति एजुकेशन से ही आगे बढ़ते हैं। तो एजुकेशन ये फाउंडेशन विंग, और उस विंग को आज पिछले 40-45 साल से कदम कदम पर आगे बढ़ाने का एक महान पुरुषार्थ, और पूरे भारत में और विश्व के देशों में भी इसका प्रसार प्रचार करने के निमित्त एक बैकबोन के रूप में ब्राता मृत्युंजय जी खड़े हैं। तो उनका भी मैं खूब खूब अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं, नमन करता हूं। फिर हमारे बीच आज हमारी बहन शुक्ला बहन जी, जो मेडिटेशन और आप की काफी प्रेरणाएं देंगी, ये भी हमारी बड़ी सीनियर बहन है, बाबा मम्मा के अंग संग रही हुई, उनकी पालना में पली हुई ये बहन, जो एजुकेशन विंग के अंदर भी सक्रिय रूप से काम करती हैं, आज उनका लाभ भी आप लोगों को मिलेगा, उनका भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। फिर हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर में प्रोफेसर एस ए कोहरी साहब, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कम मेंबर सेक्रेटरी कर्नाटका स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल बेंगलुरु से पधारे हैं, और इन्हें भी मूल्य और स्पिरिचुअलिटी में बहुत बड़ा योगदान है और काफी रस ले रहे हैं। फिर आते हैं डॉक्टर मनप्रीत सिंह, शायद पधारे नहीं हैं। फिर आते हैं गेस्ट ऑफ ऑनर में प्रोफेसर पंकज एल जानी साहब, जो वाइस चांसलर हैं बाबा साहब अंबेडकर यूनिवर्सिटी के। जानी साहब का बड़ा लंबा अनुभव है, वैसे एक दो बार पहले भी कभी आ चुके हैं और इस संस्था के निकट संपर्क में हैं। हम जब इनसे मिलने गए तो इन्होंने बहुत सहर्ष स्वीकार किया, आना तो स्वीकार किया, पर उन्होंने सामने से ऑफर की कि मुझे एमओयू भी करना है। तो बाबा साहब अंबेडकर के कई सेंटर्स चलते हैं पूरे गुजरात के अंदर, और विशेषता तो यह है कि जेलों के अंदर भी कैदियों को कई तरह के अंबेडकर के कोर्सेज करवाए जाते हैं, और उसमें ये वैल्यूज और स्पिरिचुअलिटी के कोर्स भी, उसमें भी जेलों के कैदियों के लिए भी ये कोर्स ऐड करेंगे और अपनी यूनिवर्सिटी में भी ये इस कोर्स को लागू करेंगे। तो इस तरह से आज एक एमओयू करने के लिए, और विशेष अपने देश के लिए एक चिंतक कहो, चरित्र निर्माण के निर्माता कहो, ऐसे एक व्यक्तित्व आज हमारे बीच पधारे हैं, जो आप सबके लिए प्रेरणादायी रहेंगे। आपका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फिर हैं हमारे डिस्टिंग्विश गेस्ट, फॉरवर्ड चेयरपर्सन एंड यूनिवर्सिटी ग्रांड कमीशन न्यू दिल्ली से आप पधारे हैं, वेद प्रकाश जी, यूनिवर्सिटी ग्रांड कमीशन से पधारे हुए एक ऐसा व्यक्तित्व, वो भी ब्रह्मा कुमारी आश्रम से और इस संस्था से काफी निकट के से जुड़े हुए हैं, और एक दो बार पहले भी आ चुके हैं, तो इनका भी मैं बहुत आदरपूर्वक सम्मान करता हूं। ये अनुभवी हैं और काफी मार्गदर्शक बनकर के एक फ्रेंड फिलोसोफर और गाइड बनकर के इस संस्था का मार्गदर्शन करेंगे और काफी आप लोगों को भी प्रेरणा देंगे। फिर हमारे बीच हमारी बहन रविकला जी, जो आज महरचंद जी हैं, वोट ऑफ थैंक्स अभिनंदन करेंगे आप लोगों का। हाँ, ये अच्छा, हाँ ये ऊपर का है, प्रोफेसर एम जगदीश कुमार जी जो चीफ गेस्ट हैं आज के, और वाइस चांसलर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली से पधारे हुए हैं, और दिल्ली राजधानी में रहते हुए ये तो जानते ही हैं कि देश और दुनिया की आज क्या दशा है और वैल्यूज और स्पिरिटी की कितनी महत्व आज बढ़ता चला जा रहा है। तो इस दृष्टि से आप भी इस संस्था के साथ जुड़ करके बहुत बड़ी प्रेरणा और बहुत बड़े एक महान कार्य को करने जा रहे हैं, और दिल से बड़ी उत्कंठा से यहाँ इस संस्था के बीच में आए हैं, आपका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। और हमारे भाई बीके मेहरचंद जी जो एग्जीक्यूटिव मेंबर और एजुकेशन विंग के हैं, ये भी बड़े पुराने हमारे एजुकेशन विंग के सक्रिय सदस्य हैं और कई अच्छी सेवाओं के निमित्त बने हुए हैं, आपका भी अभिनंदन और स्वागत है। हमारी बहन रविकला जी जो स्टेज कोऑर्डिनेशन कर रही हैं, ये भी सुचारू कोऑर्डिनेशन के लिए मैं इनका अग्रिम धन्यवाद कर देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ साथ आप सभी लोग जो भारत के और शायद नेपाल से भी होंगे एक दो, तो ऐसे पूरे अखंड भारत से पधारे हुए शिक्षाविद जो इस भूमि पर आना, ये एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। ये परमात्मा की दिव्य अवतरण भूमि है, कर्म भूमि है, और यहाँ के वातावरण में एक ऐसे प्रकंपन हैं जिनको अंतर की शक्तियां जागृत करने के निमित्त बनती हैं। तो ऐसे आप लोग इस सूक्ष्म प्रकंपनों को थोड़ा ग्रहण करने की एक विशेष पुरुषार्थ करेंगे और इस देश और इस संस्था से आप परिणाम और कई अच्छे बातें लेकर के जाएंगे, और चरित्र निर्माण के कार्य में आप लोग भी बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और विशेष करके एजुकेशन विंग की बात करूं मैं, तो जैसे एक फाउंडेशन की विंग है एजुकेशन, कल बता रहे थे हमारे वक्ताओं में से कि टीचर भ्रष्ट हो जाता है तो कैसे सारी दुनिया भ्रष्ट हो जाती है। हम पर एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, इस उत्तरदायित्व को निभाना है हमें, और उस उत्तरदायित्व को निभाने के लिए यहाँ के वाइब्रेशन की स्टडी करनी है, वाइब्रेशन का सूक्ष्म आध्यात्मिक वाइब्रेशन का को कैच करना है, और यहाँ के हर कार्यक्रम में जो विशेष हमारे एमओयू के जो होते हैं उन सभी प्रोग्रामों के अंदर जो एक दिव्यता है, एक चरित्र निर्माण की भावना है, देश और दुनिया की बदलने का एक बहुत बड़ा साहस है, उसमें आप सहयोगी बनेंगे, साथी बनेंगे, और आपकी अंगुली का सहयोग इस दिशा में भी आवश्यक रहेगा। ओम शांति।
धन्यवाद भ्राता हरीश शुक्ला जी का। नृत्य से आप सभी का स्वागत किया कुमारी खुशाली ने, शब्द सुमनों से आप सभी का स्वागत किया हमारे एजुकेशन विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर हरीश शुक्ला जी ने। अभी जिस कॉम्प्लेक्स में आप रह रहे हैं, जिसका नाम ज्ञान सरोवर है, इसके निवासी भ्राता नितिन जी से मैं निवेदन करती हूं आप सभी का स्वागत एक बहुत सुंदर स्वागत गीत से करें। तो हम सभी ताली बजाकर ज्ञान सरोवर निवासी नितिन जी का स्वागत भी करेंगे और निवेदन भी करेंगे। शुभ
स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं न अंत है आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं न अंत है आगमन से आपके आनंद ही आनंद है आगमन से आपके आनंद ही आनंद है शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम मंदिर सजता मूरत से और अंबर जैसे तारों से ज्ञान सरोवर का सजा है आंगन परम पिता के प्यारों से मंदिर सजता मूरत से और अंबर जैसे तारों से ज्ञान सरोवर का सजा है आंगन परम पिता के प्यारों से स्वागत और सत्कार का मौसम हो स्वागत और सत्कार का मौसम महका सिर बसंत है आगमन से आपके आनंद ही आनंद है शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम आशाओं के दीप जले हैं विश्वासों में हिले मिले सुमन सफलता के खिलेंगे साथ हमारे आप चले आशाओं के दीप जले हैं विश्वासों में हिले मिले सुमन सफलता के खिलेंगे साथ हमारे आप चले नया नहीं ये बहुत पुराना नया नहीं ये बहुत पुराना अपनों का संबंध है आगमन से आपके आनंद ही आनंद है शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम स्वर्णिम युग धरती पे सजाना हम सबका संकल्प है राजयोग से ही होना अब जग का कायाकल्प है स्वर्णिम युग धरती पे सजाना हम सबका संकल्प है राजयोग से ही होना अब जग का कायाकल्प है तभी तो परिवर्तन का नारा अभी तो परिवर्तन का नारा हमने किया बुलंद है, आगमन से आपके आनंद ही आनंद है, आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं न अंत है, आगमन से आपके आनंद ही आनंद है, शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम।
धन्यवाद भ्राता नितिन जी, बहुत सुंदर स्वागत गीत आपने प्रस्तुत किया, सभी का स्वागत किया। एक समय था ब्रिटिश साम्राज्य को कहा जाता था कि इस साम्राज्य में सूर्य अस्त नहीं होता है, लेकिन आज हम सहर्ष कहते हैं कि विश्व में ईश्वरीय विश्वविद्यालय ही एक विश्वविद्यालय है जहां सूर्य अस्त नहीं होता है। यह एक गौरव की बात है आप सभी का इस महान विश्वविद्यालय में, वो भी विशेष शिक्षा क्षेत्र के इस उद्घाटन सत्र में हम फिर से दिल से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। अभी मैं निवेदन करती हूँ डॉक्टर भ्राता पांड्यामणि जी से, जिस यूनिवर्सिटी के बारे में आपने सुना था यहाँ आने के पहले भी, यहाँ आने के बाद भी कुछ कुछ सुन रहे हो, साथ में देख भी रहे हो, ये कैसे अन्य यूनिवर्सिटीज के साथ मिलकर विशेष मूल्य शिक्षा आध्यात्म शिक्षा देने में सेवा निरत है, इसके बारे में अवगत कराएंगे डॉक्टर पांड्यामणि जी।
ओम शांति। मंच आसीन महानुभवों, परम आदरणीय राजयोगिनी बीके शुक्ला दीदी, राजयोगी बीके मृत्युंजय जी, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है एजुकेशन विंग के डॉक्टर बीके हरीश शुक्ला जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कम मेंबर सेक्रेटरी कर्नाटका स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल बेंगलुरु प्रोफेसर एस ए कोरी जी, डायरेक्टर ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन न्यू दिल्ली डॉक्टर मनप्रीत सिंह मन्ना जी, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर प्रोफेसर पंकज एल जानी जी, फॉर्मर चेयरमैन यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन न्यू दिल्ली प्रोफेसर वेद प्रकाश जी, वाइस चांसलर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली प्रोफेसर एम जगदीश कुमार जी और एग्जीक्यूटिव मेंबर बी के मेहरचंद जी, और इस मूल्य शिक्षा एवं अध्यात्म विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की शिक्षा विदों का महासम्मेलन में भाग लेने आए हुए गुरुजनों को आप सर प्रणाम करता हूं। आज इस महासम्मेलन का विषय है मूल्य शिक्षा एवं अध्यात्म। इस मूल्य शिक्षा और अध्यात्म का सेवा तो लगभग 80 साल से प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कर ही रहे हैं देश विदेश में कोने कोने में, लेकिन इस मूल्य शिक्षा एवं अध्यात्म का जो हायर एजुकेशन में सेवा है ये 9 साल पहले शुरू हुआ था, वो भी पहले जो तमिलनाडु स्थित अन्नामलई विश्वविद्यालय के साथ एमओयू हुआ, सबसे पहले हम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी तीन भाषाओं में हमने शुरू किया था, तमिल इंग्लिश और हिंदी तीन भाषाओं में। तो आपको ये सुनकर बहुत हर्ष होगा, अभी यही कार्यक्रम भारत की 11 भाषाओं में चल रहा है। एक विश्वविद्यालय में इतनी भाषाओं में एक प्रोग्राम चलना एक विचित्र बात है। तो हमने तो एक पीजी डिप्लोमा से शुरू किया था, लेकिन लोगों में इतना विश्वास था और लाभ लिया था, उन्होंने ये हमको कहा था और भी आगे बढ़ने के लिए कोर्स शुरू करें, तो हमने एमएससी इन वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी लेटरल एंट्री में हमने शुरू किया था। फिर कॉरपोरेट सेक्टर से हमको निमंत्रण आई, हमको भी एक वैल्यू शिक्षा की जरूरत है, तो हमने एमबीए इन सेल्फ मैनेजमेंट एंड क्राइसिस मैनेजमेंट ड्यूअल स्पेशलाइजेशन में शुरू किया था। उसके बाद में एक हमारे जानकी फाउंडेशन है, उन्होंने एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन वैल्यूज इन हेल्थ केयर का शुरू किया था। पिछले साल हमने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन काउंसिलिंग एंड स्पिरिचुअल हेल्थ का एक कोर्स भी शुरू किया दो भाषाओं में। अभी लगभग 7 प्रोग्राम है, उसमें अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम भी है, बीएससी है, अनामले विश्वविद्यालय के साथ सारे इंडिया में चल रहा है। उसके बाद आई हमारा यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी नासिक महाराष्ट्र से है, तो उन्होंने एक 3 ईयर्स का बीए इन वैल्यूज एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन का कोर्स शुरू किया है। वो लगभग अभी 3 साल पूरा किया है, अभी 4th ईयर में दे आर एंटरिंग। उसके बाद आई वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा राजस्थान का, जिन्होंने पीजी डिप्लोमा इन वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी एंड सर्टिफिकेट कोर्स इन वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी उन्होंने शुरू किया था, अभी वो भी कार्यक्रम हमारा महत्वपूर्ण चल रहा है। उसके बाद आई डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी, तो असम से है, उन्होंने एमबीए इन सेल्फ मैनेजमेंट एंड क्राइसिस मैनेजमेंट का कार्यक्रम शुरू किया था। उसके बाद असम से एक डाउनटाउन यूनिवर्सिटी है गुवाहाटी में, उन्होंने हमारे साथ पीजी डिप्लोमा इन वैल्यूज इन हेल्थ केयर एंड पीजी डिप्लोमा इन वैल्यूज एंड स्पिरिचुअलिटी के बारे में उन्होंने कोर्स शुरू किया था। उसके बाद एक बीएम मुंजाल यूनिवर्सिटी गुड़गांव में है, उन्होंने रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए हमारे साथ एमओयू किया था। तो कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी के साथ भी हमारा एमओयू हुई थी। उसके बाद हमारा गणपत यूनिवर्सिटी है मेहसाणा में गुजरात में, उन्होंने अपने इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को एक कोर्स वैल्यूज एंड एथिक्स के बारे में शुरू किया था, अभी 4 साल से बहुत लाभदायक पूरा कार्य चल रहा है। उसके बाद विदेश की एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट इंडीज टोबैको से, उन्होंने भी हमारे साथ एमओयू किया। आज अभी आप सुनकर बहुत हर्ष होंगे, आज एक हम यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू करने जा रहे हैं, वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद से। इस कार्यक्रम में हम शुरुआत में सर्टिफिकेट कोर्स और डिप्लोमा कोर्स इन वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी शुरू करेंगे, उसके अलावा अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एक पेपर वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी का शुरू करने का तय किया गया है, तो उसके बारे में हमारा आदरणीय ब्रदर मृत्युंजय जी आपको बताएंगे। तो इस कार्यक्रम का शुरुआत तो 9 साल पहले हुआ है, अभी तक लगभग 70,000 स्टूडेंट्स ने इसका लाभ लिया है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो वैल्यू एजुकेशन के बात तो सब कर ही रहे हैं, यूजीसी भी कर रही है, सब जहां पर होना चाहिए, लेकिन ब्रह्मा कुमारीज इज द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन हैज स्टार्टेड दिस कोर्सेस इन हायर एजुकेशन। आई रियली प्राउड टू गिव द इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम्स व्हाट यू आर रनिंग थ्रू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री एंड इन फॉरिन कंट्रीज। थैंक यू वेरी मच।
सचमुच आपने एक महान कार्य करके दिखाया है, और भी सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान परम शिक्षक परमात्मा इस दिशा में आपको और शक्ति दे, सहयोग दे, सफलता दे, यही हमारी दिल की दुआएं हैं, शुभ भावनाएं हैं, क्योंकि वैल्यू एजुकेशन इज द नीड ऑफ द आवर, इज द कॉल ऑफ द टाइम। क्यों? क्योंकि आप और हम सभी जानते हैं, एक कहावत भी है, एक शायरी भी आपने सुना होगा, आदमी को देख डर रहा है आदमी, आदमी को लूट घर भर रहा है आदमी, मर रहा है आदमी, मार रहा है आदमी, आदमी को देख खुद हैरान है आदमी। एक जंगली जानवर सामने आता है तो हम डरते नहीं, चाहे शेर हो चाहे चीता हो, अंदाज हो जाता है ये काटेगा, खाएगा, मारेगा, जाएगा, हमारा पूरा हो जाएगा। एक सांप आता है जहरीला, वो भी क्या करेगा क्या नहीं करेगा हम अंदाज कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य सामने आता है तो हम अंदाज ही नहीं कर सकते हैं आज के समय कि ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा। ये है हमारे वर्तमान परिस्थिति। इसलिए हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि संसार को शमशान बनाना ना सीखो, वरदान को अभिशाप बनाना ना सीखो। ये चांद सितारों को लक्ष्य बनाने वाले इंसान को इंसान बनाना सीखो, इंसान को इंसान बनाना सीखो, क्योंकि इंसानियत की गरीबी है समाज में, जो हमें फिर से विकास करना है वैल्यू एजुकेशन द्वारा। तो हम धन्यवाद करते हैं डॉक्टर पांड्यमणि जी से। अभी मैं निवेदन करती हूँ प्रोफेसर यस्य कोरी जी, जो बेंगलुरु से आए हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का मेंबर सेक्रेटरी कर्नाटका स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल, भ्राता कोरी जी।
ओम शांति। सीकिंग द ब्लेसिंग्स ऑफ प्रजापिता ब्रह्मपिता ओम शिवा, डिग्निटरीज ऑन द डायस, राजयोगी बीके मृत्युंजय जी, प्रोफेसर वेद प्रकाश, प्रोफेसर जगदीश कुमार, राजयोगी बीके शुक्ला दीदी, बीके डॉक्टर बीके पांड्या मानी, डॉक्टर बीके हरीश शुक्ला जी, कुमारी कौशल्या जी, बीके नितिन जी, बीके मेहरचंद जी, अदर डिस्टिंग्विश्ड डेलीगेट्स ऑफ दिस वैल्यू एजुकेशन फंक्शन, टीचर्स लेडीज एंड जेंटलमैन, फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल कलाम अप्लॉडेड द सर्विस ऑफ ब्रह्म कुमारीज बाय सेइंग टुडे द विजन ऑफ द वेदास वासुदेव कुटुंबम हैज बिकम ए रियलिटी नॉट बिकॉज ऑफ वेरियस फिलोसॉफिकल पार्ट्स ऑफ टीचिंग्स बट बिकॉज ऑफ teachings of the Brahma Kumaris, which evolved around mutual brotherly love. This institution has helped us to cross over the world of unhappiness to happiness. At the outset, I would like to congratulate Brajapita Brahma Kumaris Ishwariya Vishwavidyalaya for organizing the conference on value education and spirituality. I salute the services of this organization, which is committed to the cause of moral and spiritual upliftment of mankind, as its services are the philanthropic and open to all, irrespective of the caste, the creed, the color, the community, nationality, race and religion. Once upon a time, the Nobel laureate of our country, Rabindranath Tagore, said the object of education is to give the man of unity of truth. I believe in a spiritual world, not as anything separate from this world, but as it is innermost truth with the breath we draw, we must always feel this truth that we are living in God. The spirituality is the quality or the condition of being spiritual, and spiritual is as relating to the soul or spirit. usually it contracts to the material things and relating to religious or scared things rather than the worldly things. Though spirituality, it is possible to identify universal values, principles and practices by examining those that are common to the most of the world cultures, the traditions, the religions, though some of disagreement will remain. Therefore, education-based spirituality helps to develop a perfect human being in our life. John Tyler of Gatto, an American and a former school teacher in 1935, and served as a teacher more than 35 years, and he resigned to that profession and need for the value education and spirituality in the education. Then after he resigned, he wrote many books on the modern education, the ideology, the history, the further consequences and the value education. Because in the US, the connectivity with the God, the connectivity with the humankind, the connectivity of undoing things, it is not with the country of the big country like us, which has a big heritage and culture given to this all over the world. So through his books, education should make you unique individual, not a conformist. It should furnish you with an original spirit with which to tackle the big challenges. It should allow you to find values which will your roadmap through life. It should make your spirituality rich. A person who loves whatever you are doing, wherever you are, whoever you are with, it should teach you what is important, how to live and how to die. That's what the spirituality in books Gatto said after the 30 years of his experience in the school education. On the contrary, today's education system concentrates on providing its students the skills to do the things. In other words, it concentrates on providing how to do rather than what to do or why to do. The present education system does not prepare the students well for dealing with life. Primarily, it prepares them for professional or jobs. Our students, whoever graduates or postgraduate, they will not face the challenges the way it comes in their lifetime. When it rains, all the birds look for shelter. When it rains, all the birds look for a shelter to escape from the rain. But only the eagle bird, which flies above the cloud and avoid this rain, that is the challenges. So such kind of the values to be taught to our students to face the challenges, not to look for any shelters. If they inculcate the values of the education and spiritually, definitely they'll face the challenges whatever they occurs in their lifetime. As a result of this, the students are neither aware of their surroundings nor of their own self and face life with difficulty. Students have to learn by themselves to deal with life, which includes the examining one's goals, identifying and sorting out the conflicts, the dealing with relationships in the families and friends, surrounding societies, and leading a mutually enriching relationship with nature. So this requires ability to think critically about everyday matters of life. The pre and post independence, almost all the education policies have given significance to develop an ideal education system. Some examples are, Brahma Somaj started in 1828 by Rajaram Mohan Roy, then the father of the Rabindranath Tagore, the Devendranath Tagore, who aimed at to educate people without any discrimination between the caste, creed or religion, and was an assembly of all sorts of description of people without the distinction. Later, the post-independence, the Secondary Education Commission of the country between 1952 to 53 laid special emphasis on the following values in the formation of character of the students. The one is the efficiency, the integrity, the discipline, the cooperation and good temper. Recognizing the urgent need for value education, the National Education Policy on Education 1986 in its Chapter 8 observed that the growing concern over the erosion of essential values and an increasing cynicism in society has brought to focus the need for readjustment in the curriculum in order to make education a forceful tool for the cultivation of social and moral values. In our culturally plural society, education should foster universal and eternal values oriented towards the unity and integration of our people. Such values, education should help eliminate the religion fanatism, the violence, the superstition and the fatalism. Apart from this combative role, value education has a profound positive content based on our heritage, the national and universal goals and perceptions. It should lay primary emphasis on this aspect. The new education policy of 2016 has given importance for the inclusion of value education. Professor Ved Prakash is here. He was part of this 2016 education, the policy, where they are bringing this, the value education in the curriculum, so that our young, our 60% of the youth, they are the future of the country, the future of the world, they can not to divert, not to involving any other the crimes or any other things, that is the one they are bringing in. The value inculcation is essential to promote the equity, the social justice, tolerance and national integration, truth, the satya, righteous conduct, that is dharma, the peace, shanti, love, prema and non-violence, that is ahimsa, are the core universal values which provide the foundation for a value-based education system. Value education has to be made an integral part of education at all the levels of primary, secondary, higher education and postgraduate level. Teachers, parents and community leaders have to play a major role in instilling good values among the students. There are five minds for the future for the global citizens. The one is the disciplined mind. The second one is the synthesizing mind. The third one is the creative mind. Fourth is the respectful mind. And the fifth one is the ethical mind. So all these values, this Brahma Kumaris, the promoting to the all the citizens, all the ages of the human beings of the world. Really, we salute to their contributions, their self-sacrifice, their self-service, the kind of the missionary they are running across the world. It is really a marvelous. To realize the objectives of all these policy documents, along with the schools, the colleges and universities, many socio-spiritual institutions are making their efforts. We can proudly mention that the Brahma Kumaris World Spiritual University in Mount Abu and its centers all over the world is one among all such the institutions. It is said that education opens minds, but spirituality opens hearts, so that we feel and emphasize the Brahma Kumaris are contributing to open minds and hearts. I thank the organizers for inviting me to be the part of this conference, and I sincerely wish that this kind of educational activities should be organized everywhere so that our country and world can reap the benefits of a young nation with ethically fit citizens. Thank you. Thank you, Anadar.
We surely will arrange such type of spiritual programs, but we heartily welcome in advance Brother S.A. Koriji for all programs along with you all. Thank you very much. Now I request, अभी मैं निवेदन करती हूँ हमारे सीनियर सिस्टर राजयोगिनी बी के शुक्ला दीदी जो ओम शांति रिट्रीट सेंटर दिल्ली के नजदीक गुड़गांव में है उसके डायरेक्टर है हमें राजयोग का अभ्यास करेंगे मैं निवेदन करती हूँ बहनों से हमारे इस एजुकेशन विंग के चेयरमैन भ्राता निर्वैर जी का स्वागत कर रहे हैं आप सभी भी करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे
सभी प्रेम से बोलिए ओम शांति ओम शांति। मंच आसीन आदरणीय वक्तागण सभा में उपस्थित मूल्यनिष्ठ मेरे प्यारे भाई और बहनों शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो जीवन के अंदर सर्वांगीण विकास कर सकता है शिक्षा एक ऐसा बीज है जो फलदार वृक्ष के समान जीवन को सर्व गुणों से सर्व शक्तियों से सर्व प्रकार से भरपूर कर सकता है शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य यही है कि मानव के जीवन में अंतर्मन में जो सुषुप्त शक्तियां हैं रश्मियां हैं उनको जागृत करें और एक श्रेष्ठ सुंदर महान जीवन जीने की कला प्रदान करें शिक्षा हमें संतुलित जीवन जीने की कला देती है पर आज की शिक्षा प्रणाली भौतिकता की तरफ बच्चों का ध्यान ज्यादा खिंचवाती है जिसके कारण आज का विद्यार्थी दशा और दिशा दोनों के वहीन हो गया और मृग तृष्णा की तरह इधर उधर भटक रहा है कि आखिर मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है वास्तव में देखा जाए मूल्यनिष्ठ शिक्षा हमें संसार के अंदर एक श्रेष्ठ संस्कारों का निर्माण करना सिखाती है और श्रेष्ठ संस्कारों से ही श्रेष्ठ संस्कृति बनती है परंतु आज की व्यक्ति के पास ना कोई दिशा है ना कोई दशा है ऐसे समय पर वो परमपिता परमात्मा जो हम सबका शिक्षक है वह हमें एक बहुत सुंदर आंतरिक ज्ञान नेत्र देकर ये समझ देते हैं कि वास्तव में देखा जाए कि जीवन वो हो जो सर्वगुणों से सर्वशक्तियों से संपन्न हो, परंतु उसके लिए जीवन तभी श्रेष्ठ बन सकता है जो ज्ञान नेत्र परमात्मा पिता हमें देते हैं, उस ज्ञान नेत्र को जीवन की प्रयोगशाला के अंदर यूज करें हम। क्योंकि जीवन की प्रयोगशाला में जब तक ज्ञान नेत्र को, जिस ज्ञान नेत्र के द्वारा हमें सत्य का बोध होता है, आध्यात्मिकता नैतिक जीवन की प्रथम सीढ़ी है। अगर आध्यात्मिकता जीवन नैतिकता राष्ट्र की निधि तो मानी जाती है, परंतु अगर उसके अंदर आध्यात्मिकता की पुट नहीं तो नैतिक उत्थान भी नहीं हो सकता, क्योंकि आध्यात्मिकता के बिना नैतिकता अधूरी है। तो परमात्मा पिता हम बच्चों को यही कहते हैं कि आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करो, क्योंकि जब तक आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा, कई लोग समझते हैं आध्यात्मिक शक्ति श्रद्धा का विषय है, इसमें पूजा पाठ निकने करना पड़ेगा, परंतु वास्तव में देखा जाए आध्यात्मिकता श्रद्धा का विषय नहीं है। आध्यात्मिकता हमें सत्य का बोध कराती है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, शरीर क्या है, आत्मा क्या है, उन सब का ज्ञान आध्यात्मिकता हमें देती है। आध्यात्मिकता ही हमें संतुलित जीवन जीने की कला भी प्रदान करती है। आध्यात्मिकता हमें सर्वगुणों का कैसे हमारे जीवन के अंदर विकास हो, सर्वशक्तियों का कैसे विकास हो, हमारे चरित्र का कैसे विकास हो, उसकी नॉलेज आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त होती है। और आध्यात्मिकता से ही हम श्रेष्ठ जीवन जीने और श्रेष्ठ संस्कृति लाने का मार्ग सीखते हैं, जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर बहुत अच्छी तरह से बताया जाता है। परंतु आज आध्यात्मिक शक्ति की कमी होने के कारण मानव जो है वो एकदम बॉडी कॉन्शियसनेस में रहता है, ईगो माइंड होकर के रहता है, और वो समझता है कि मैं ही मैं हूं सब कुछ, और फिर उसके अधीन होकर के वो अनेक विकार अनेक विकृतियों का शिकार हो जाता है। परंतु आध्यात्मिकता हमें जन्म जन्मांतर से जो हमारे भीतर विकृतियां हैं, विकार हैं, उनको नष्ट करने की शक्ति प्रदान करती है। आध्यात्मिकता हमें असली जीवन जीने के लिए सबसे पहले हमारे अंदर सत्य स्मृतियों को जागृत करती है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा इस संसार के अंदर आने का उद्देश्य और लक्ष्य क्या है। परंतु आज का मानव इस बात को अच्छी तरह से भूल गया है। अब आध्यात्मिकता हमें सत्य का बोध, वास्तव में मैं एक शरीर नहीं हूं, मैं एक शरीर को चलाने वाली आत्म शक्ति हूं, उसका बोध कराती है। एक व्यक्ति ने, एक व्यक्ति के पास दो शिष्य पढ़ने के लिए आए, और उन दो शिष्य को दो साल उन्होंने पढ़ाया, और उसके बाद वो दो मास के लिए घर छुट्टी पर जाने लगे। तो एक शिष्य का नाम था श्याम, दूसरे का नाम था राम। तो जाने लगे तो जाते हुए वो महात्मा जी ने कहा कि जरा संसार, तुम जा रहे हो दो मास में ये पता लगाना कि संसार में मूल्यहीन वस्तु कौन सी है। अब दोनों ने कहा ठीक है, हम अच्छी तरह से इसको बोध करके जान करके आएंगे। परंतु एक शिष्य जो श्याम था वो तो जाते ही अपने घर परिवार में लग गया, क्योंकि उसके पिताजी बीमार थे। पर दूसरा जो शिष्य था राम, और उसने सोचा गुरुजी ने एक बहुत बड़ा काम दे दिया कि मूल्यहीन वस्तु कौन सी है, उसको मुझे जानना है। तो वो काशी गया, अनेक गुरु गोसाइयों के पास गया, बहुत भिन्न भिन्न प्रकार से उसने रिसर्च करना शुरू किया, परंतु उसके हाथ में कुछ नहीं लगा, और वह उदास और निराश हो गया। और एक दिन, मतलब उसने यही सोचा, अब वापस टाइम भी आकर के पहुंचा, गुरु जी के पास ही जाकर के पूछा जाए कि मूल्यहीन वस्तु कौन सी है। परंतु रास्ते में उसका श्याम जो दोस्त था उसका घर पड़ता था, तो उसने सोचा चलो श्याम से मिलते चलते और दोनों इकट्ठे चलेंगे। तो उसने उनसे पूछा, वहां गया तो क्या देखता है, बहुत जोर जोर से रोने की आवाजें आ रही है और बहुत अजीब सा वातावरण है। तो उसको मालूम हुआ कि श्याम के पिता ने शरीर छोड़ दिया है, देहांत हो गया उनका। अब लोग, गांव के लोग उनको सजाने दजाने में और ले जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। और राम ने जब उसको देखा तो उसने श्याम से सुना हुआ था कि वो बड़ी दयालु है, बड़े गुणवान है, विद्वान है और बहुत लोगों की भलाई करते हैं। तो अब उसके श्याम के मित्र संबंधी और उसके पिता को थोड़ा रोकने की कोशिश कर रहे थे, परंतु वो जो गांव के लोग थे उन्होंने कहा कि नहीं, जल्दी करो जल्दी करो, इनका जल्दी संस्कार करना है। तो ये सब बातें देख करके राम के मन में ख्याल आया कि संसार में अब मैंने पा लिया उसका उत्तर, संसार में सबसे मूल्यहीन वस्तु है इंसान का निर्जीव शरीर। जब आत्मा, इस चैतन्य आत्मा इसके अंदर विराजित होती है तो हर प्रकार का कर्म करते हुए दिखाई देती है। आत्मा एक ज्योति प्रकाश के समान है, जो अगर उसके अंदर सद्गुणों का वास हो, श्रेष्ठ कर्मों का वास हो, पुण्य का खजाना उसके पास हो, तो वो स्वयं भी अपने जीवन को प्रकाशित करके अन्य आत्माओं को भी प्रकाशित कर सकती है, अन्य के चरित्र का निर्माण कर सकती है। तो जब वो गुरुजी के पास गए तो उन्होंने कहा कि मैंने ये जान लिया कि सबसे सबसे मूल्यहीन वस्तु मानव का निर्जीव शरीर है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम अपने असली पिता को, असली अपने स्वरूप को, असली अपने सद्धर्म को, असली अपने देश को, जहां से हम आए हैं, उन सब को भूल करके इस पांच तत्वों का जो बना हुआ शरीर है उसको ही हम ऑल इन ऑल समझ करके बैठे, जिसके कारण हमारे अंदर बाहर वृत्तियां जागृत हो गई है, बाहर मुखी हम बन गए हैं, और बाहर मुखी होने के कारण हमारे अंदर अनेक अनेक विकार, अनेक अनेक बुराइयां, अनेक अनेक कमजोरियां पनपने लग गई है, जिससे हम अपना जीवन अंधकार में महसूस करते हैं। परंतु आध्यात्मिक ज्ञान हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। कहते हैं अगर आत्मा का ज्ञान हो, आत्म स्थिति हो, तो आत्म स्थिति श्रेष्ठ और महान जीवन की एक कुंजी है, और आत्म स्थिति से प्राप्त पवित्रता उसकी पूंजी है, और पवित्रता से प्राप्त प्रसन्नता उसका ऐश्वर्य है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम चाहते हैं अपना जीवन भी श्रेष्ठ बनाए और अपने द्वारा अन्य आत्माओं का जीवन भी श्रेष्ठ बनाए और एक नए राष्ट्र का निर्माण करें जिसका नैतिकता राष्ट्र की नीति है, तो उसके लिए हमें अपने आप को जानना और उस परम शक्ति परमात्मा को जानना जरूरी है। कहते हैं कि जब भक्ति का, आप सभी भक्ति करते हैं, भक्ति काल में भगवान के आगे यही आराधना करते हैं, प्रभु तो मेरी एक उंगली पकड़ लो तो मेरा कल्याण हो जाएगा, मुझे मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल जाएगी। परंतु आज परिवर्तन की शुभेला में परमात्मा पिता कहते हैं तुम मेरी एक उंगली पकड़ लो, अर्थात मुझे अपना हाथ दे दो तो मैं तेरे को, अगर तू अपना हाथ मेरे हाथों में देगा या मेरे को अपना साथी और सारथी बनाएगा तो मैं तेरे को सर्व पापों से और सर्व संतापों से मुक्त कर दूंगा। तो अगर इच्छा है कि सचमुच जो जन्म जन्मांतर के किए हुए वे पाप कर्म है, वे कर्म है, उसको योग अग्नि के द्वारा दगत करे तो कर सकते हैं और अपने श्रेष्ठ जीवन का निर्माण कर सकते हैं। देखिए ये हाथ के अंदर एक उंगली के तीन भाग है, ये तीन भाग हमें तीन प्रकार की शिक्षाएं देते हैं। पहला भाग कहता है मन वचन कर्म को शुद्ध करो, दूसरा भाग कहता है ट्रस्टी बनकर के रहो संसार के अंदर, और तीसरा भाग कहता है अपना तन, अपना मन, अपना धन, गृहस्थ व्यवहार के जो भी कार्य व्यवहार है उसमें लगाओ, और उसके बाद जो तुम्हारे पास श्रेष्ठ टाइम, अलग थोड़ा सा टाइम भी बचता है या थोड़ा सा धन भी बचता है तो उसको समाज सुधार में लगाओ, क्योंकि समाज अपने आप नहीं सुधरेगा, समाज को सुधारने वाले हम और आप हैं। तो आप सब यहाँ पर पधारे हैं और उसके लिए आप सबको मेरी यही शुभ राय है कि आप यहाँ पर जो आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा और अमृत वेले जो योग की विधि और निधि बताई जाती है उसको आप अपने साथ प्रसाद के रूप में ले जाएंगे तो आपका जीवन श्रेष्ठ और महान बन सकता है। अब हम कैसे उस विधि को अपने जीवन की धारा में अपनाएं, सकारात्मक चिंतन कैसे करें, शुभ चिंतन और समर्थ चिंतन कैसे करें, तो थोड़े समय के लिए हम चमरी और धमरी के बाण को भूलकर अहम और वहम से ऊपर उठकर बुद्धि रूपी विमान पर सवार हो जाइए और अपने आप को एक बहुत जो वास्तव में मैं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर पांच तत्व का बना हुआ है, इस शरीर को चलाने वाली मैं एक शुद्ध और पवित्र आत्मा और मैं आत्मा सूक्ष्म अति सूक्ष्म ज्योतिर्मय बिंदु स्वरूप हूं। मुझ आत्मा का शरीर के अंदर ब्रकुटी के अंदर वास है, इस ब्रकुटी के ऊपर ब्रकुटी पे मैं वास करते हुए सारे शरीर का संचालन करती हूँ। मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं सशक्त हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, पवित्र स्वरूप हूँ। मुझ आत्मा का वास निज धाम परम धाम है। जो बुद्धि रूपी विमान पर सवार होकर चलिए अपने उस प्यारे से प्यारे घर में, जो सूरज चांद सितारों से भी परे है, जहां पर चारों ओर शांति ही शांति है, कितनी पवित्रता है, कितनी निसंकल्पता है, इस शांति धाम में मेरे परम पिता वास करते हैं। आहा, कितना अच्छा लग रहा है, मेरे मन का मीत मेरे जीवन का सहारा, परमपिता निवास कर रहे हैं। आप शांति के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, कल्याणकारी हैं, हे करुणानिधि, मैं आपका हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ू, क्योंकि आपने मुझे श्रेष्ठ और महान जीवन जीने की कला सिखाई है। हे प्राणनाथ, आप ही मेरी सर्वा है। मैं आपका कितना बड़ा शुक्रिया अदा करूं आपने मुझे श्रेष्ठ जीवन जीने की कला दी है। हे प्रभु, आपसे कल्याणकारी किरणें उतर उतर कर समस्त विश्व में फैल रही। जो ही संसार का शुद्धिकरण करेगी, मैं शुद्ध हूं, मैं पवित्र हूं, मैं सशक्त हूं, आपसे सर्व प्रकार की शक्तियां लेकर वापस इस रंगमंच पर जा रही हूं। शरीर से न्यारी और प्यारी सूक्ष्मति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा, ओम शांति शांति शांति।
शांति। जीवन जीने की कला, जीवन को सुंदर बनाने की कला राजयोग है, जो आप अभी अभ्यास कर रहे हैं मॉर्निंग सेशंस में। यह नित्य हम अभ्यास करेंगे, हमारे जीवन का अविभाज्य अंग बनाएंगे, तो अवश्य ही जीवन सुंदर भी बनेगा। क्योंकि हम और आप सभी जानते हैं, व्हेन ए रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द प्रिज्म, seven colors are emitted. The same way, when meditation becomes part and parcel of our life, surely seven colors are emitted from our life. The first color that is emitted is that of virtues. The second color is that of holistic health. The third color is relaxation. Fourth one is optimism. Fifth color is self-management. And on the basis of these five colors, we have the sixth color emitted, that is behavioral change. And on the basis of these six colors, we have the last and the most important color, that is best future. On the basis of these seven colors, our life becomes more colorful, more meaningful, more essenceful. I wish you all a colorful, a meaningful, an essenceful life through Raj Yoga. Now I request Dr. Manjit Singh Manaji, who is the director of All India Council for Technical Education and has come all the way from New Delhi. I welcome Dr. Manaji and request him to share his experiences. Dr. Manaji.
Om Shanti Om, Om Shanti Om. मंच पर उपस्थित विख्यात जीवन के अनुभव से पूर्ण ज्ञानवत सभी हस्तियों को मेरा प्रणाम, मेरा नमन. आज का दिन मेरी 46 साल की आयु का वह भाग्यशाली दिन है जो कि मुझे इस ज्ञान सरोवर में डुबकी लगाने का आज अवसर प्राप्त हुआ. कई बार आप अपने जीवन में कुछ कुछ कार्य कर रहे होते हैं, अपने ही रंगमंच में, अपनी दुनिया में, अपने ही होश में होते हैं और आपको लगता है कि यही जीवन है. फिर कभी अकेले बैठे मन में ये भी लगता है, क्या कोई दूसरी दुनिया भी है? पढ़ते तो हैं लक आकाशा आकाश पाताला पाताल, हमने तो नहीं देखी. जी हां, दूसरी दुनिया है, सिर्फ वहां तक चल के आने की आपको चेष्टा करनी है. मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं हमारी एक शिक्षिका चित्रा जी का, जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं आपके बीच में आके खड़ूं और आप सब के दर्शन कर पाऊं. क्यों ऐसा कह रहा हूं? भगवान को साक्षी मान के मैं आपको एक शब्द कहता हूं कि जब से मैं सुबह इस परिसर में अंदर आया हूं, कुछ एक अलग सी पकड़, एक वाइब्रेशंस, एक पॉजिटिविटी जो मैं महसूस कर रहा हूं, मैं ही जान सकता हूं. शायद मैं आपको शब्दों में बयान भी ना कर पाऊं. ऐसा क्यों है? ये इसलिए है, आज हम अपने देश में, एक किसी कंट्री की एग्जाम्पल लूं तो सिंगापुर कंट्री की पॉपुलेशन से ज्यादा पॉपुलेशन के बच्चों को हम इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पढ़ा रहे हैं. आज हम अपने देश में 10,500 से ज्यादा अधिक हमारे संस्थान हैं जहां पर हम ये टेक्नोलॉजी पढ़ा रहे हैं, और इसका दायित्व हमारे ऊपर है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन बीइंग अ रेगुलेटर. जब इतना बड़ा हमारे पास युवा वर्ग है, युवा एनर्जी है, वो ऊर्जा क्या सच में संचालन हो पा रही है? क्या सच में अगर हम इतने बड़े युवा वर्ग को तकनीकी शिक्षा अपने इस देश के पाठ्यक्रम से दे रहे हैं, क्या उतने आविष्कार भी इस देश में निकल के आ रहे हैं? When we talk about the consumer, we are the third in this world as the consumer market. We are the third. But when we talk about the innovation, we are at 66th rank. And we just jumped from 85 to 66th rank. शोध क्यों नहीं हो पा रही है? हमारा युवा विचलित क्यों है? क्यों? आज घर में एक या दो ही होते हैं, पहले पांच या छह होते थे. पहले शायद आधी रोटी कम भी खाने को मिलती थी, आज आधी रोटी प्लेट में छूट भी जाती है बच्चे से, क्योंकि हम ओवर फीडिंग करने की कोशिश करते हैं. पहले दो कपड़े मिलते थे, एक को धोते थे, एक को पहनते थे, आज शायद अलमारियां भरी रहती हैं कपड़ों से. पहले साइकिल लेने के लिए तीन तीन छह छह महीने के लिए बच्चा जिद करता था, उसको साइकिल मिलती थी, आज 20,000 का मोबाइल देने के लिए हम दो मिनट भी नहीं सोचते अपने बच्चों को. इसका मतलब यह हुआ, सब कुछ दे पा रहे हैं, अच्छे संस्थान दे दिए, अच्छा घर दे दिया, अच्छी सुविधाएं दे दी, एसी में सोने के लिए उसको अच्छा कमरा दे दिया, लेकिन जो देना था मेंटल हेल्थ, वो छूट गई है. दादा दादी की कहानी छूट गई है. क्योंकि हमने उनको टीवी के साथ बांध दिया, हमने उनको व्हाट्सएप के साथ बांध दिया। अगर वो दादा दादी की कहानी सुनते तो पता चलता कि कृष्ण कौन थे, रामायण क्या है और गीता का सार कहना क्या चाह रहा है, वो सुन नहीं पा रहे हैं। क्यों? माता पिता तो अपनी इस दौड़ में लगे ही हुए हैं। जब तक सारे अंग पूरे काम करेंगे उनको लगता है कि मेरे से अच्छा ऑफिसर कोई नहीं है, मेरे से अच्छा साइंटिस्ट कोई नहीं है, मेरे से अच्छा दुकानदार कोई नहीं है, और आप ही के लिए तो कर रहा हूं मैं, इतनी मेहनत किसके लिए कर रहा हूं, आपके लिए कर रहा हूं। ये कह के वो भी चैन की नींद सो जाते हैं कि बच्चों के लिए तो मेहनत कर रहे हैं। क्या बच्चों को जो वो ऊर्जा, जो वो शिक्षा, जो वो मेंटल हेल्थ, जो अभी दीदी ने बात की यहां पर, हम अपने बच्चों के साथ इतना बड़ा अपराध कर रहे हैं, ये सोचने की कोशिश की? देखिए आज के शिक्षक पर कितना बड़ा भरोसा है। मैं बहुत बार माता पिता मिलते हैं, कभी उनसे बात करता हूं, स्कूल में पहली श्रेणी में बच्चे को छोड़ने गए थे, पहला कदम स्कूल में गया था, तो बच्चे की जब उंगली आपके हाथ से छूट रही थी तो कैसे विचलित हुए थे। कई माताओं की आंखों में तो आंसू भी आ गए, ये सुन के वो सीन सर याद मत कराइए, अलग सी एक अलग सी भावना थी कि आज बच्चा 3 घंटे के लिए मेरे से दूर रहने वाला है। मैंने कहा आप वैसी भावना देखना चाहते हैं? वो कैसे देख सकती हूं, आपके बच्चे में दिखा सकता हूं? नहीं, मैं उससे दूर कहां जा रही हूं, आपको कौन दूर जाने के लिए कह रहा है? आइए बैठिए, मैं आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूं। मैंने उस बच्चे को क्लास से बाहर बुलाया अपने कक्ष में, मैंने कहा बेटा मुझे 5 मिनट के लिए अपना मोबाइल दे दो। बच्चा छटपटा उठा। मैंने कहा लॉक खोल के दे दो। बच्चा और ज्यादा छटपटा उठा। मैंने कहा ये यंत्र ने इसको बांध लिया, आपने नहीं इसको बांधा है। मैंने बच्चों को स्कूल बस से उतरते हुए देखा कि आज मोबाइल घर छूट गया है, स्कूल छूट जाए भले, मैं मोबाइल पहले पकड़ने जाऊंगा घर में। यानी कि माता पिता की उंगली इतनी आज उनके लिए सिग्निफिकेंट नहीं है, उनके हाथ में वो यंत्र इतना सिग्निफिकेंट किया। दिया किसने? हमने दिया, माता पिता ने ही दिया। क्योंकि हमारे देश में 760 यूनिवर्सिटीज हैं, 10,000 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, टोटल 50,000 कॉलेजेस हैं, लेकिन एक भी मुझे संस्थान नहीं मिलता जहां पे ये लिखा हो कि इट्स अ पेरेंट्स एजुकेशन सेंटर। फिर हमें यहां पर आना पड़ता है। ज्ञान सरोवर, यही ऐसे संस्थान हमें चाहिए इस देश में, ऐसे और कुंड चाहिए जहां पर विद्यार्थी भी बैठे हैं, माता पिता भी बैठे हैं। बहुत मंच पे जाता हूं, बहुत बोलने का अवसर प्राप्त होता है, ह्यूमन वैल्यूज की बात की जाती है, टेक्निकल एजुकेशन की बात की जाती है, क्या बात करते हैं हम? वही जो किताबों में लिखी हुई है। कभी इस मंच पे खड़े होकर मैं एक माता पिता को इतना निवेदन करूंगा कि इस मंच पर आकर अपने घर की कहानी बताएं, तो क्या वो बता पाएंगे कि मेरा ही बच्चा आज मुझे प्यार से नहीं मांगता है, घूर के मांगता है मुझसे चीज, मैं फिर भी उसको प्यार से देता हूं, और माता पिता प्यार से दवाई मांगते हैं, मैं घूर के कहता हूं कि आज समय नहीं कर ला के दूंगा। कैसे सच्चाई यहां आकर खड़े होकर बताएंगे? नहीं बता पाएंगे। क्यों? हम अपने आप को कभी नहीं मानते कि मैं किसी भी अपनी पोस्ट के, अपनी शिक्षा के उसमें कम हूं। क्या जरूरत है इस तरह के सेमिनार की, गोष्ठी की, सम्मेलन की? जरूरत इसलिए है, हम सब जानते हैं हम कर क्या रहे हैं, हम सब जानते हैं हम खा क्या रहे हैं, हम सब जानते हैं हम पहन क्या रहे हैं, लेकिन शायद हम कुछ भी नहीं जानते हम आए किस लिए थे। ये जो जन्म प्राप्त हुआ था ये किस लिए प्राप्त हुआ था, ये जीवन जो प्राप्त हुआ था, एक पशु को देख लीजिए ना, सुबह उठेगा तो भी वो सिर्फ यही ढूंढता है कि मुझे खाना क्या है, शाम को भी वो झाड़ियों में मुंह मारेगा और देखेगा मुझे खाना क्या है, लेकिन किसी को तंग नहीं करता है, वो सिर्फ अपना भोजन ढूंढता है। हम भोजन तो नहीं ढूंढते लेकिन हम दूसरों को तंग करने के बहुत बहुत अवसर प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ये जीवन हमारा होता जा रहा है। क्यों? द मेजर डेफिशिएंसी इज दैट डेफिशिएंसी, हमारा जो मानसिक संतुलन है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप सबके पास 2G 3G 4G का कनेक्शन भी रहता होगा, गूगल भी आपके मोबाइल में है, आप चेक कीजिए, सब देशों की स्टडीज को पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा है कि डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है उसकी गिनती किसी भी बीमारी की तुलना में कहीं ज्यादा हो चुकी है। ये डिप्रेशन है क्या? क्या यह कुछ गलत वस्तु खाने से हुई, ज्यादा धूप में घूमने से हुई, ज्यादा सोने से हुई? नहीं, ये डिप्रेशन क्या है? ज्यादा सोचने से हुआ। क्यों? हम सोचते बहुत हैं, मंथन नहीं करते हैं, चिंतन नहीं करते हैं, सोचते बहुत हैं। सबसे बड़ी कमजोरी यही है, जो सोचता है हमारा विद्यार्थी और वो प्रश्न पूछना चाहता है कक्षा में, अभी हाथ ही खड़ा करता है, हम उसको कहते हैं तू चुप करके बैठ जा, मेरा पाठ्यक्रम बाकी है, मुझे पढ़ाने दे क्योंकि मुझे सिलेबस पूरा करना है। वो आविष्कार था, वो इस देश का पेटेंट था, वो हमने वही खत्म कर दिया। और समय किसको दिया? क्लास के बाद जाके जो बार चाय पी रहे हैं हम आपस में बैठ के सहयोगी कुलीग्स, वहां पे क्या कर रहे हैं? ऐसे विचार, कितनी छुट्टियां बाकी हैं, सेवंथ पे कमीशन कब आएगा, प्रिंसिपल की ट्रांसफर कब होगी, तुम्हारी फाइल के साथ क्या किया जा रहा है, ये विचार किए जाते हैं। फिर दोष किसको दिया जाता है? सरकार की नीतियां ठीक नहीं है, सरकार ग्रांट नहीं देती है। दोष ढूंढना बहुत आसान है दूसरों में, अपने दोष को ढूंढना और कहना तो शायद मैं कहूंगा कि ये इम्पॉसिबल ही है।
दादी जानकी जी, आप सभी के स्नेह में यहाँ तक आई है तो दिल से हम सभी फिर से धन्यवाद भी करेंगे करतल ध्वनि से।
एक सच्चे दोस्त जैसी माँ, पूछो ना है कैसी मेरी माँ, एक सच्चे दोस्त जैसी माँ, मेरे बदन में जान जैसी माँ, मिले मुझे किस्मत से ऐसी माँ। पूछो ना है कैसी मेरी माँ, एक सच्चे दोस्त जैसी माँ, मेरे बदन में जान जैसी माँ, मिली मुझे किस्मत से ऐसी माँ।
शाली अवसर है, देखिए कैसे ऊर्जा का प्रवाह हो गया। ये होती है ऐसी रूह जिनके प्रवेश से हमें लगता है कि हमारे अंदर की मैल ही उतर जाती है। सच में बहुत भाग्यशाली मैं महसूस कर रहा हूं अपने आप को। हम सब भाग्यशाली हैं जब आज हमें उनके दर्शन प्राप्त होते हैं, उनका आशीर्वाद हमें मिलता है। अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आज मुझे यह अवसर प्राप्त हुआ, ये मेरा भाग्य का दिवस है, मैं आपके बीच में खड़ा हो पाया, अपने विचार रख पा रहा हूं। लेकिन विचार कम, प्रार्थना करना चाहता हूं। जब भी हम सोचते हैं कि हमें कुछ अपने जीवन के कुछ मूल्य से हटके करना है, तो जैसी ऐसी सोच बनती है उसको विचार में लेके आए। जब तक वो विचार नहीं बना पाएंगे, वो एक्शन में परिवर्तित नहीं हो पाएगा। विचार पूरे दिन में बहुत आते हैं मन में, आधे हम मार देते हैं, आधे खुद मर जाते हैं। यह ठीक नहीं है। क्यों आपके बीच में खड़ा हूं? क्योंकि आप सबके बच्चे हमारी इस शिक्षा प्रणाली से जो आज ज्ञान ले रहे हैं, खास करके मैं तकनीकी शिक्षा की बात करूंगा, क्योंकि उसमें मेरे जो कंधों पर भार है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म शुरू किया है इस देश के लिए, जो विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, जिसका नाम है स्वयं। हिंदी में स्वयं शब्द को आप भलीभांति समझ सकते हैं, अंग्रेजी में SWAYAM, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इस देश नहीं, विश्व में कोई भी सीखने की रुचि रखता हो किसी भी विषय में, वो इस प्लेटफॉर्म से, इस पोर्टल से फ्री ऑफ कॉस्ट 8वीं कक्षा से लेकर PhD तक के विषय के कोर्सेज swayam.gov.in के माध्यम से, उस पर 350 विषय अभी आ चुके हैं, 50,000 से ज्यादा विद्यार्थी और जो सीखने की रुचि रखते हैं वो आ चुके हैं। उसके लिए कोई उम्र सीमा नहीं है। एक होममेकर, एक रिक्शा पुलर, एक दुकानदार, या कह लीजिए जिसको कभी स्कूल में जाने का भी अवसर प्राप्त नहीं हुआ, वो भी कुछ सीखना चाहता है, वह भी इस पोर्टल पे जाके सीखता है। ऑनलाइन पोर्टल है, सभी मोबाइल वेरिएंट्स में भी है, आपके लैपटॉप पे भी है। क्यों इसकी बात यहां पे कर रहा हूं? हम बहुत सारे कोर्सेज उसमें लेके आए। ब्रिटिश काउंसिल ने 3 कोर्सेज उसमें दिए, एक कोर्स है उसमें से क्रिटिकल थिंकिंग। जब मैंने वो क्रिटिकल थिंकिंग कोर्स को पढ़ना शुरू किया, तो मैं गर्व से कहता हूं, मुझे ये महसूस हुआ जो ये पाठ्यक्रम हमें दे रहे हैं उससे ज्यादा कहीं हमारी संस्कृति इतनी ऊंची है, हमारी ह्यूमन वैल्यूज का पाठ्यक्रम जो इस देश में है, जो इस तरह संस्थान से मिलता है, उसके सामने वो कोर्स कुछ नहीं है। परंतु क्या हम शिक्षक ऐसे कोर्स उस पे लेके आ पाएंगे? ये हमारे लिए सोचने की बात है। आज सोच लेके जाइए, कल विचार कीजिए, शायद कहीं परसों आप ईमेल करेंगे कि हां, हमने जो इस ज्ञान सरोवर कुंड से जो ज्ञान प्राप्त किया, क्योंकि मेरा तो पहला दिन है, मेरी एडमिशन तो आज हुई है, मैं देख सकता हूं कुछ चेहरे ऐसे हैं जो कई सालों से जहां आ रहे होंगे, वो कैसे देख सकता हूं? मैंने जो यहां पे आके सबके, ये मैं साइंटिफिक बात कर रहा हूं, बिल्कुल साइंस के बाहर होके कोई बात नहीं करूंगा, क्योंकि बेसिकली आई एम इंजीनियर, डॉक्टर इन इंजीनियरिंग। ओरा समझते होंगे आप, आपका जो चेहरे का ग्लो है, वो ग्लो आपकी एज नहीं, आपका तेज भी बताता है कि आपको अब तक कितना ज्ञान प्राप्त हुआ है, और उसकी कोई आयु नहीं होती। 8 साल के बच्चे के चेहरे का ग्लो कहीं बेहतर कहीं पर पाया जाता है 70 साल के मनुष्य से, क्योंकि बच्चा जो होता है ना, वो भगवान का दूसरा रूप होता है, क्योंकि उसमें अभी छल कपट आया नहीं, इम्प्योरिटीज ऐड नहीं हुई है, इसलिए बच्चे का ग्लो हमेशा ज्यादा होता है। और कहते हैं कि देखो बच्चे की आंखों में नूर क्या है, अभी अभी क्या देखा हमने, एक नूर आया ना, एक ग्लो आया, और सब खिंच गए। उनका ऑरा कितना बड़ा था, वहां वाले भी खिंच गए, वहां वाले भी खिंच गए। ये ऑरा कैसे बड़ा होता है, इसके लिए कोई अलग से परिश्रम नहीं करना है, किसी स्कूल में एडमिशन नहीं लेनी है, इसके लिए PhD भी नहीं करनी है, बस इस तरह के जो सरोवर, ऐसी धरोहर हमारे देश में, ऐसे परिसर, उनमें आ जाइए। आते हुए अपनी पोस्ट, अपने घर की समस्याओं को घर की कुंडी पे टांग कर आइएगा, ये पहले जरूरी है। यहां बैठे ये मत सोचिएगा कि घर में बेटे ने दूध पिया कि नहीं, मोबाइल स्विच ऑफ होना जरूरी है, क्योंकि उसको आप नहीं पाल रहे, उसको वही पाल रहा है जिसकी शरण में आप आके बैठे हो, तो फिर उस पर छोड़ दीजिए ना। सब हम कहते हैं, छोड़ते नहीं है, कहते हैं हम सब कि मेरी पूरी आस्था है मेरे भगवान पर, जो भी आपका भगवान है, किसी ने पत्थर में पा लिया, किसी ने पौधे में पा लिया, किसी ने भगवान को साक्षात प्रणाम कर लिया, कहते सब हैं, करते नहीं है। बस यही एक जर्नी है, कहना और एक्चुअल में करना, करनी और कथनी, ये जर्नी इंपॉर्टेंट है। गोल इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि गोल तो अभी 5 मिनट के लिए हम सब ने आंखें मूंदी, एक अलग सी पीछे से ध्वनि चल रही थी, आपने भी सुनी, मैंने भी सुनी, ये प्रकाश क्यों, ये प्रकाश उसके सामने बहुत फीका था, इसलिए इसको मध्यम कर दिया गया, क्योंकि अंदर का प्रकाश इतना तेज हो जाता है, ये बाहर की ट्यूबलाइट एलईडी आपको वो रोशनी नहीं दे सकती जो रोशनी आपको अंदर से प्राप्त होनी शुरू होगी थी, और आपने महसूस किया है, मैंने भी यहीं बैठ के महसूस किया, यहीं बैठ के। सच जानिए, सुबह 3 बजे का उठ के आया हूं, रास्ते 4 घंटे की जर्नी की थी, बस वो 5 मिनट दीदी ने जैसे ही यहां पर जो वो किया है ना, अब मैं इतना फ्रेश हूं, मुझे भगा लीजिए जितना आप भगाना चाहते हैं, दिस इज एनर्जी, दिस इज एनर्जी। अगर ये रोज अपने जीवन में, छोड़ दीजिए ये रोज आप उठ के जो विटामिन की गोली खाते हैं ना, हर्बल्स खाते हैं, हमारे देश के नीम को आपने विदेश में बेच के पेटेंट करवाया, आज वहां से आप टेबलेट लेके खाते हो नीम की, हमारे आयुर्वेदा को आपने बाहर जाने दिया, वहां की रेकी आई है, आप 20,000 रुपए का कोर्स करते हो रेकी का, ये हमारी धरोहर थी, हमारे शास्त्र थे, हमारे वेद थे, हमने उनको पढ़ने की, बच्चों को बोला कि इनको सम्मान दो, इतना ही बोला, ये भी नहीं बोला कि इसके ऊपर धूल पड़ जाती है साफ कर देना, वो रोज सिर्फ माथा टेक के चला जाता स्कूल बच्चा, माथा टेकने के लिए ग्रंथ नहीं बने हैं, अगर बत्ती उस कमरे में जलाने के लिए ग्रंथ नहीं बने हैं, जो प्रभ को मिल बो चाहे, जो प्रभ को मिल बो चाहे खोज शब्द में ले, ये जो शब्द है ना, इनमें खोजना पड़ेगा आपको, और आपको सब कुछ उसी में प्राप्त होगा। छोड़ दीजिए हम यहां पर खड़े होके क्या बोल रहे हैं, मेरे से ज्यादा आप ज्यादा ज्ञानी हैं जो बीच में बैठे हैं, फर्क इतना है कि मुझे अवसर प्राप्त हुआ इधर से आके बोलने का, और आपको सुनने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन अगर किसी को मौका मिलेगा मेरे से अच्छा बोल पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर मेरे से ज्यादा ज्ञान है, फर्क इतना है, इसको पकड़ना है, अपने शब्द को पकड़ना है, अपने ज्ञान को पकड़ना है, और अपने बच्चों तक प्रवाह करना है। मेरी यही आपसे प्रार्थना है आज इस मंच से, अपने बच्चों को ये ज्ञान से वंचित मत कीजिए, यही अच्छी शिक्षा है, उनको ऐसी ऐसी परिसर में आते हुए छुट्टी भी बनाने आए तब भी पहले बच्चों की टिकट बनाइए, बाद में अपनी टिकट बनाइए, तभी आपका जीवन निर्भय हो पाएगा। धन्यवाद।
धन्यवाद डॉक्टर मन्ना जी। अभी मैं निवेदन करती हूँ एमओयू साइनिंग सेरेमनी के लिए डॉक्टर पांड्यामणि भाई जी से। दोनों विश्वविद्यालय के बीच में समझौता हो रही है, बाबा साहेब अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, इन दोनों के बीच में अध्यात्म तथा मूल्य शिक्षा के विचारों को बच्चों में तथा उनके शिक्षकों में भी लाने का एक सुंदर कोर्स तैयार किया हुआ है, उसके लिए दोनों संस्थाओं की तरफ से, दोनों विश्वविद्यालय के तरफ से समझौता हो रहा है। भ्राता मृत्युंजय जी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तरफ से तथा भ्राता पंकज एल जानी जी बाबा साहेब अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद से सिग्नेचर कर रहे हैं, समझौता हो रहा है। आप सभी एक बार ताली से अपने शुभकामनाएं प्रकट करेंगे। धन्यवाद आप सभी का।
सभी जानते हैं हमारे बच्चे जा रहे हैं यूनिवर्सिटीज में, मास्टर डिग्री ले रहे हैं, मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग, सो मेनी सब्जेक्ट्स के मास्टर्स तो बन रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश मास्टर ऑफ माइंड, मास्टर ऑफ लाइफ नहीं बन रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है, मैन हैज गेन्ड कंट्रोल ओवर द नेचर बट हैज लॉस्ट कंट्रोल ओवर हिज ओन नेचर। तो हमें जीवन में वैल्यूज को लाना है। यह शुभ संदर्भ पर हम सभी पिता परम शिक्षक परम पिता को भी याद करेंगे और हमारी दिल की दुआएं हैं, शुभकामनाएं हैं, सफलता प्राप्त हो इस कार्य में हर प्रकार से। यह भारत देश मूल्यों से आधारित देश है, विश्व गुरु बने। अभी शुभ आशीर्वाद ले रहे हैं इस एजुकेशन विंग के चेयरमैन भ्राता निर्वैज जी से, जो इस संस्था के जनरल सेक्रेटरी भी है। तो आप सभी एक बार फिर से ताली बजाकर अपनी शुभ भावनाएं तथा सफलता के लिए शुभकामनाएं देंगी। आशीर्वाद संस्था के मुख्य प्रशासिका आदरणीय दादी जानकी जी से भी ले रहे हैं। निवेदन करती हूँ प्रोफेसर पंकज एल जानी जी, जो वाइस चांसलर है बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के, अहमदाबाद से आए हैं, दो शब्द हमारे समक्ष शेयर करने के लिए इस समझौते के बारे में, वैल्यू एजुकेशन के बारे में। डॉक्टर प्रोफेसर प्रोफेसर पंकज एल जानी जी,
ओम शांति। परम पूज्य, परम वंदनीय, प्रातर स्मरणीय पूज्य दीदी के चरणों में कोटि कोटि नतमस्तक वंदन करता हूं। वंदन करता हूं मंच पर विराजमान सभी महानुभावों को, भारत देश के विविध प्रांत से पधारे हुए विद्वज्जन, विश्वविद्यालयों के कुलपति जी, फैकल्टी डीन, प्रोफेसर्स, अध्यापकगण, देवियों एवं सज्जनों, आज का दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी एवं व्यक्तिगत मेरे लिए बहुत ही गर्व और गौरव का दिन है कि विश्वविद्यालय को और व्यक्तिगत तौर से मुझे खुद को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ में औपचारिक तौर से जुड़ने का आज अवसर प्राप्त हुआ है। मैं आभार व्यक्त करता हूं परम पूज्य दीदी का, मैं आभार व्यक्त करता हूं विश्वविद्यालय के महानुभावों का जिन्होंने यह अवसर हमें प्रदान किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी मूल्यनिष्ठ शिक्षण के लिए, शिक्षा के लिए प्रमाण पत्रीय अभ्यासक्रम और उसके बाद में डिप्लोमा अभ्यासक्रम और तीसरे परिसर में ग्रेजुएशन में इस विषय को औपचारिक तौर से शुरू करने का यह एमओयू हम आज सिग्नेचर हमने किया है। इस विषय को करीबन चार महीने पहले से हमने शुरू किया था। संस्थान के अहमदाबाद और गांधीनगर के जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ में औपचारिक रूप से बैठकें हुई, विश्वविद्यालय के सत्ता मंडल जो हैं उसमें हमें बात रखी और आखिरी निर्णय हुआ कि यह अभ्यासक्रम इस विश्वविद्यालय में भी शुरू हो। पुराणों में संदर्भ है पृथ्वी माता गाय माता का स्वरूप लेकर ब्रह्मा जी के पास में गए, कारण माता विचलित है, पृथ्वी लोक पर दुराचार राक्षसों का दुराचार और द्रवित माता ब्रह्मा जी के पास में इसका निवारण करने के लिए, इस व्यथा को दूर करने के लिए ब्रह्मा जी के पास में जाती हैं। ब्रह्मा जी ने मां को आश्वस्त किया, मां को कहा आप निश्चिंत रहिए, मैं खुद पृथ्वी लोक पर अवतार लेकर दुराचारी का निवारण करने के लिए, राक्षसों का संहार करने के लिए मैं अवतार लेकर पृथ्वी लोक पर आऊंगा। और हम सब जानते हैं पुराणों में संदर्भ है अवतार, फिर वह रामचंद्र जी हो, कृष्ण भगवान हो, परशुराम जी हो, नारद जी हो, गरुड़ जी हो, अवतार आए और पृथ्वी लोक से दुराचारी का निवारण किया। आप सब प्रश्न पूछ सकते हैं कि उसके बाद में क्या हुआ, आज कौन अवतार है, कौन इस दुराचारी का निवारण करेगा। एमओयू करने के पीछे की बात का मैं ये संदर्भ आपके समक्ष रख रहा हूं। हमारे अवतार हैं परम पूज्य दीदी जैसे संत महापुरुष, हमारे सबके गुरुजन, और बात आकर अटकती है हमारे घर में ही हमारे माता पिता। मैं शिक्षक हूं, मैं शिष्य भी हूं, हर रोज कुछ ना कुछ सीख रहा हूं। हनुमान जी जैसे हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल जाते हैं और जांबवंत जी जैसे गुरु आकर उन्हें शेक करते हैं, याद दिलाते हैं। मुझे भी यह महसूस हुआ कि हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास वाइब्रेशंस, मैं यहां की बात नहीं कर रहा हूं, मान साहब ने जो बात की है मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं कि वाइब्रेशंस ऊर्जा मैंने खुद ने अनुभव की, मैं कई बार यहां पर आया हूं, पर मैं दूसरी बात कर रहा हूं यहां पर, भारत देश का चरित्र कैसा, भारत देश का आज का चरित्र कैसा, तो कि हर तरफ भ्रष्टाचार की बात, हर तरफ करप्शन की बात, हर व्यक्ति यह सोचता है अलास आई हैव नॉर होप नॉर हेल्थ नॉर पीस विद इन नॉर कम अराउंड नॉर फेम नॉर पावर नॉर लव नॉर लीजर बट अदर्स आई सी होम दीस सराउंड ओ लिफ्ट मी एज अ वेव अ क्लाउड आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ आई ब्लीड। परिस्थिति ऐसी है, मैं क्या हूं, मैं महान हूं, मैं क्या कर सकता हूं, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, बस यही कहते हैं मेरे पास में कुछ भी नहीं है जो दूसरे लोगों के पास में है। अरे दूसरे लोगों के पास में क्या है, पर हर इंसान यही सोचता है मेरे पास में कुछ भी नहीं है, और ये कुछ नहीं जो बात है वहीं से शुरुआत होती है इस भ्रष्टाचार की। कारण इसका यही है कि हमारे आज के जो अवतार हैं, हमारे शिक्षक गण और माता पिता, मान साहब ने जो सब बातें की मैं मानता हूं बिल्कुल, माता पिता अवतार गुरु सब कुछ है, शिक्षा बालक की शुरुआत होती है डे वन से, जब मदर कंसीव करती है, बालक के जन्म के बाद की बात नहीं कर रहा हूं। हम तो ये सोचते हैं कि बच्चा बड़ा हो जाएगा, पढ़ लेगा, प्राथमिक के बाद में उसे शेक करेंगे, उसे कुछ कहेंगे, स्कूल पूरी कर लेगा, कॉलेज में आएगा, तब उसे बात करेंगे। और फिर एक समय ऐसा आता है जब माता पिता कहते हैं बच्चे को ठोकर लगेगी और ठोकर लगने के बाद में वह सुधरेगा। हम हमारे बच्चे को ठोकर लगने के लिए क्यों छोड़ रहे हैं? मुझे खुद को आभास हुआ कि मेरे विश्वविद्यालय में करीबन 200 हमारे ऐसे केंद्र हैं गुजरात राज्य में कि जहां से मूल्यनिष्ठ शिक्षा की बात, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन हम खुद शुरुआत करें। हम खुद हमारे बच्चों को ग्रेजुएशन में है, पोस्ट ग्रेजुएशन में है, डिप्लोमा अभ्यासक्रम है, बीसीए बीबीए कई तरह के बीएड में छात्र हैं जो टीचर बनने वाले हैं, पर वैल्यूज की बात आज कोई नहीं कर रहा है। वैल्यूज की बात कोई नहीं कर रहा है। यहां तक कि चाणक्य जो है गुरुओं के गुरु और भारतवर्ष के निर्माण की जिन्होंने कल्पना की थी, राष्ट्र निर्माण की जिन्होंने कल्पना की थी, चाणक्य ने भी यही कहा था कि जिस घर के अंदर माता पिता संध्या काल में अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे रहे हैं वह घर घर नहीं है, श्मशान है। पर हम लोग बोध पाठ नहीं लेते हैं। हम हमारे बच्चों को जो कहना है, जो कार्य करना है, हम उन्हें ज्ञान नहीं दे रहे हैं, हम उन्हें शिक्षा नहीं दे रहे हैं। हम सब अपनी अपनी दौड़ में हम लोग लगे हुए हैं। निर्माण कार्य, राष्ट्र निर्माण की हम कल्पना करते हैं, निर्माण कार्य बहुत ही कठिन कार्य है। एक दिन में राष्ट्र निर्माण नहीं होता, एक दिन में बालक का, बच्चे का, व्यक्ति का निर्माण नहीं होता है, समय लगता है। लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मैं माता पिता से और गुरुजनों से नम्र विनती करता हूं कि यदि हमें हमारे कल की हमें चिंता है, हमारे बच्चों की चिंता है, तो उन्हें डे वन से, प्रथम दिन से वैल्यू एजुकेशन की, मूल्यनिष्ठ शिक्षा की अपने घर से ही शुरुआत करें, उन्हें सिखाएं। उन्हें थपकारने की जरूरत है। हम बार बार बात करते हैं गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, घट घट काढ़े खोट, अंदर हाथ सराह दे बाहर लगावे चोट। हम बिल्कुल चोट बच्चे को नहीं देते हैं, हम तो उनको पैंपर कर रहे हैं, हम चोट नहीं लगा रहे हैं, हम उन्हें शेक नहीं कर रहे हैं। मैं अपनी बात, मेरा व्याख्यान कल है, मैं कल बात करूंगा वैल्यू बेस्ड पर, मेरे खुद के अनुभव और जो सीखा है मैं आपसे शेयर करूंगा। आज मुझे सिर्फ मेरे एमओयू की बात करनी थी। मैं पुनः गौरव अनुभव करता हूं इस एमओयू को साइन करने के बाद, और मैं इस मंच से मैं आदरणीय दीदी को आश्वस्त करता हूं कि इस अभ्यासक्रम को, इस वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की बात को, मूल्यनिष्ठ शिक्षण की बात को मैं खुद स्वयं इसे कोऑर्डिनेट करूंगा और हमारे बच्चे इसे ज्यादा से ज्यादा अपनाएं और उसके ऊपर आचरण करें। मैं आपको इसका आश्वासन देता हूं और मैं मेरी बात पूरी करता हूं। ओम शांति।
आप सब ने सुना होगा एक फिल्म सॉन्ग, हिंदी बहुत पुराना, सूर्य न बदला चांद न बदला ना बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान। इसलिए कहते हैं नगरी तो वही है नजारे बदल गए, साथी तो वही है सहारे बदल गए, हम तो वही है हमारे बदल गए। ये संबंध बदलते, रिश्ते, संस्कृति और सभ्यता जो श्रेष्ठ और गौरवान्वित थे भारत के, आज वो दिनों दिन क्षीण होते जा रहे हैं। फिर से उनको पुनर्स्थापित करने में भ्राता जी ने बहुत ही बोल्ड स्टेप लिया है। उन सभी को हम फिर से करतल ध्वनि से धन्यवाद करेंगे और सफलता देने के लिए सर्वेश्वर से प्रार्थना भी करेंगे। धन्यवाद भ्राता जानी जी। अभी मैं निवेदन करती हूँ भ्राता मृत्युंजय जी से, जो इस एजुकेशन विंग के वाइस चेयरमैन हैं, इस कार्यक्रम के बैकबोन हैं, तो आप सभी के तरफ से स्वागत भी करती हूँ, निवेदन भी करती हूँ।
शांति। ओम शांति। ओम शांति। विश्व शांति स्थापक परम शिक्षक परम सद्गुरु परम पिता को याद करते हुए पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को याद करते हुए इस समय हमारे सम्मुख में उपस्थित परम आदरणीय दादी जानकी जी 102 वर्ष की आयु में भी इतनी चेतना शक्ति उनके पास है, इतनी इंस्पिरेशनल पावर इनके पास है, मोटिवेशनल पावर इनके पास है और संकल्प से भी सिद्धि का अनुभव करने का शक्ति उनके पास है। उसका अनुभव बहुत लोगों ने किया, अभी आप लोगों ने भी कुछ किया और परम आदरणीय दादी हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है आज इस कॉन्फ्रेंस में खुद उपस्थित है। इसके लिए जोर से ताली बजा करके दादी का अभिवादन करें। और साथ साथ में हम सब के लिए इस ईश्वरीय परिवार के लिए इस विश्व के लिए एक नया चेतना शक्ति हमारा आदरणीय निर्वेर बाजी उपस्थित है। उन्होंने खास नीचे शांति वन से इस कार्यक्रम के लिए ब्लेसिंग देने के लिए आए। आपको भी आप सभी ने ताली बजा करके स्वागत किया और हम सब के लिए खुशी की बात है। प्रोफेसर वेद प्रकाश जी वेदों का भी प्रकाश है, टेक्निकल नॉलेज का भी प्रकाश है, संस्कृति का भी प्रकाश है, शिक्षा की प्रकाश है, खुद ही प्रकाश है। ऐसी प्रकाश दिल्ली से चल करके इधर तक आए हैं। आपको भी मैं अपनी तरफ से और उनकी परिवार उनकी मिसेस भी आए, धर्म पत्नी भी आए हैं, उनको भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप लोग कहेंगे ना क्या बात है, स्वागत सब रिद्धु पूरा नहीं हो, अभी कंटिन्यू है, ये मेरा फर्ज है, मेरा काम है, इसके लिए मैं भाई साहब को भी स्वागत करूँ। साथ साथ में अभी भी पंकज ज्ञानी साहब, वो जानी जानी है, उसको ज्ञानी है, वो जानी जाननहार बाबा कहते हैं, इसके लिए जानी जाननहार, उन्होंने इस शिक्षा का भविष्य क्या होगा वो जानते हैं, इसके लिए उन्होंने हमारा साथ हाथ बढ़ाया, सेवा बढ़ाया, शिक्षा बढ़ाया और विधि बढ़ाया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत कृतज्ञ हूं भाई साहब, आपको बधाई हो। साथ साथ में कुछ ही समय पहले हमारा मनप्रीत सिंह जी कुछ ही क्षण के पहले उन्होंने आए, मैंने इतना नहीं समझा इनके वाइब्रेशन भी कैच कर लेगा, लोगों को इंस्ट्रूमेंट लगाए तो भी कहले कई लोगों को पता नहीं पड़ता है। मैंने भी तो आजकल टेक्नोलॉजी का एज है, भूकंप होने के बाद में प्रिडिक्ट करता है ऐसे होने वाला था। हमारे देश के प्राणी कुत्ते बिल्ली आदि लोग होने से पहले ही पता पड़ जाते हैं उनको, परंतु मनप्रीत सिंह जी को उनका प्रीत भी है, रीत भी है, बाबा से प्रति प्रेम है, वैल्यूज के प्रति प्रेम है, उसके लिए उनको आते हुए ज्ञान सरोवर का वाइब्रेशन इतना खींच के आया, परंतु उन्होंने अपनी शब्दों में बहुत बताया। आपको भी मैं बहुत 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 धन्यवाद देता हूं भाई साहब। साथ में हमारा कोरे साहब हैं, प्रोफेसर एस के कोरे साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कम मेंबर सेक्रेटरी कर्नाटका स्टेट हायर एजुकेशन की। उन्होंने कुछ दिन पूर्व में आपसे मिलने का सुअवसर मिला, परंतु उससे बात करने का वार्तालाप करने का मौका नहीं मिला था। मुझे आज आपका बात भी सुनने के लिए मौका मिला और आपसे मिलने का भी मौका मिला, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ ही समय के अंतराल में हम सुनने वाले प्रोफेसर एम जगदीश कुमार जी, वाइस चांसलर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी आजकल डेली न्यूज में रहता है, सारी अखबारों की फ्रंट पेज में रहते हैं। भाई साहब को मैंने नहीं देखा, आज तो आपको मिलने का अवसर मिला, आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हनी हमारा सारी साथी है, और भी बहुत वाइस चांसलर प्रोफेसर पीएन शास्त्री जी है, वाइस चांसलर राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान है न्यू दिल्ली से है, और डॉक्टर बी एस सत्यनारायण जी है, वाइस चांसलर बीएमएल मुंजाल यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर वी एन कल्याणकर है, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी चंद्रापुर है, चिंतामणि महापात्र है, प्रो वाइस चांसलर है, और भी बहुत वाइस चांसलर्स है, चांसलर्स है और आदि, आपसे शिक्षाविद है, मां सरस्वती के वरपुत्र आप सभी आए हैं, आप सबको मैं अपनी तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर राधाकृष्णन राष्ट्रपति होकर के गए, गुजर गए, उनका ये विचार था, विश्वास था, नेशन इज बिल्ट इन द क्लासरूम, देश का निर्माण क्लासरूम में होगा,
परंतु आजकल वो कंसेप्ट थोड़ा चेंज हो गया। मैं उसके डिस्क्रिप्शन में नहीं जाएंगे, परंतु शिक्षा नॉलेज इज पावर कहां जाता है। सदियों से विश्वास करते आए नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज वे टू एनलाइटनमेंट, नॉलेज इज वे टू ब्लिस, नॉलेज लिबरेट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। परंतु नॉलेज इज पावर कहते हैं, आजकल को नॉलेज इज पावर कहते हैं, परंतु कैसी पावर? नॉलेज इज पावर टू मेक मनी, मनी मेकिंग मशीन बना दिया। नॉलेज को मनी मेकिंग मशीन बना दिया, मैन मेकिंग मशीन बनाने के बजाय। इसके लिए इसको थोड़ा कंसेप्ट को हमको चेंज करना पड़ेगा, चाहे टेक्निकल एजुकेशन हो, आईटी एजुकेशन हो, वह हेल्थ एजुकेशन हो, लॉ एजुकेशन हो, वह कोई भी एजुकेशन हो, मैन मेकिंग मिशन होना चाहिए। ईश्वरीय विश्वविद्यालय के पिता श्री जी के श्री बाबा का यही है। आजकल हमारा प्राइम मिनिस्टर भी इस दिशा में कार्य कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं डिजिटल इंडिया बनाने के लिए। परंतु हम इसको डिजिटल इंडिया से एक कदम आगे बढ़कर के डिवाइन इंडिया बनाने के कार्य होना चाहिए। डिवाइन इंडिया जब होगा तब तो भारत में जैसे अभी समस्या की बात बहुत सुनी और ऑटोमेटिकली क्राइम फ्री सोसाइटी बनेगा, डिसीज्ड फ्री सोसाइटी होगा, पॉल्यूशन फ्री सोसाइटी होगा, पावर्टी फ्री सोसाइटी होगा, एंगर फ्री सोसाइटी होगा, जेलस फ्री सोसाइटी होगा, हेट्रेड फ्री सोसाइटी होगा। क्योंकि डिविनिटी के साथ ये सब नहीं रह सकता। जहां डिविनिटी है, प्यूरिटी है, पीस है, ट्रूथ है, बिकॉज वी बिलीव द ट्रूथ इज पावर। गांधी जी का ट्रूथ पर विश्वास था, इसके लिए इतने क्रांतिकारी कार्य करके विश्व में करीब 2500 से जो काम नहीं कर सकते वो महात्मा गांधी जी ने कुछ ही समय के अंतराल में उन्होंने काम करके दिखाया, बिकॉज इट वॉज द नॉन वायलेंस पावर, इट वॉज द ट्रूथ पावर। परंतु आज का ट्रूथ नहीं है, उसके बारे में चर्चा भी नहीं करेंगे। मैं इतने ही कहेंगे, नॉलेज इज पावर तब कहा जाता है जब मनुष्य के अंदर अंधकार से मुक्त हो जाए, प्रकाश की ओर ले जा सके। नॉलेज इज फॉर एनलाइटनमेंट, एनरिचमेंट, एम्पावरमेंट एंड इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन। आज परिवर्तन की बात हम करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होना चाहिए। मैं सबसे पहले इस समय में परम आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी इस संस्था के हेड रहे और कुछ समय पहले अव्यक्त हो गए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूं, मैं हैट सैल्यूट करते, क्योंकि इस ईश्वरीय भिजन में आने के माध्यम मैंने एक दिन भी मुरली मिस करता तो दादी बोलती थी इनको आज भोजन नहीं देना, इनको आज मुरली मिस नहीं किया, इनको खाना नहीं देना, इनको सेवा नहीं देना, पहले जाकर के मुरली पढ़ के आओ, बाद में सेवा करो, बाद में। मैं इसके लिए आज भी याद करता हूं, धन्यवाद देता हूं। मुरली क्या चीज है, यह सबसे बड़ी बात। मुरली केवल वेदों से, पुराणों से, शास्त्रों से, किताबों से, लाइब्रेरी से बना हुआ चीज नहीं है। मुरली स्वयं शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के तन में, क्योंकि वो परम शिक्षक है, उन्होंने मुरली सुना है। वो मुरली है मनुष्य के मस्तिष्क को, तीसरा नेत्र को खोलने वाला मुरली है। वो मुरली वो है मनुष्य को जीवन को ऊर्जा देने वाला मुरली है। वो मुरली वो है सोल पावर को इंक्रीज करने के लिए मुरली है। आजकल सोलार पावर की बात करते हैं, सोल पावर को भूल ही गया। इसके लिए वो मुरली है मनुष्य की अज्ञान से मुक्त करने की मुरली है, मनुष्य को जीवन को अपने आप से योग करने की मुक्त है, अपने पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अपना क्या है, अपना चरित्र क्या, अपना संस्कार क्या, आदि आदि बातों को जानने के लिए, इट इज ए माइक्रोस्कोप देखने के लिए अपनी कमी कमजोरी के क्या है और कमी कमजोरी को दूर करने की विधि क्या, वो मुरली है। ऐसी मुरली जिस दिन एक एक कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में मुरली पढ़ाने का कार्य होगा, भारत दैवी स्वराज बन के जाएगा और स्वर्ग बनेगा। ये काम कौन करेगा? शिक्षक लोग करेगा। ये पाठ्यक्रम में हो नहीं हो सकता है वो मुझे मालूम है, परंतु वो मुरली की शब्द है, मुरली की महावाक्य है, मुरली की शिक्षा है, मुरली की ज्ञान है, उसको ही वैल्यू एजुकेशन है, वही को स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी जहां होगा वहां मेटीरियलिस्टिक डेवलपमेंट भी होगा और साथ साथ में हर प्रकार की होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा। लोग कहते हैं स्पिरिचुअल एजुकेशन इज समथिंग रिलीजियस है, इट इज नेग्लेक्टेड, रिलीगेटेड, आउटडेटेड समझते हैं, इट इज एन इग्नोरेंस ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड पीपल, इट इज एन इग्नोरेंस। इस इग्नोरेंस से, मिथ से दूर होकर के spiritual education should be the holiest education. It should be a compulsory for all children and for all level of education. Chahe technical education ho, medical education ho, legal education ho, koi bhi education ho, uska spiritual education ho chahe. Jo spiritual education se hi Bharat विश्व गुरु बन सकता है. भारत गुरु बने तो विश्व ऑटोमेटिकली शांति समृद्धि होगा. मैं अधिक समय न लेते हुए इतने ही कहेंगे. आप सबको ओम शांति, नमस्ते, प्रणाम.
धन्यवाद भ्राता मृत्युंजय जी का. इस संसार को सुखमय बनाने के लक्ष्य से हम सभी इस अध्यात्म ज्ञान को अर्जन करेंगे, ज्योति से ज्योति जगाएंगे, विश्व का तमस को दूर करेंगे. ज्ञान के प्रकाश में सुख शांति का अनुभव हर आत्मा करे, सुखमय समाज का हम निर्माण करने में हमारा योगदान दे, सहयोग दे. इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अभी दीप प्रज्वलन के लिए मैं निवेदन करती हूँ हमारे मंच पर उपस्थित अनुभवी वक्ताओं को तथा प्रोफेसर पीएन शास्त्री जी, वाइस चांसलर राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान न्यू दिल्ली, डॉक्टर बीएस सत्यनारायण वाइस चांसलर बीएमएल मुंजाल यूनिवर्सिटी गुड़गांव, डॉक्टर एनवी कल्याणकर वाइस चांसलर गोंडावना यूनिवर्सिटी चंद्रपुर, प्रोफेसर चिंतामणि महापात्रा प्रो वाइस चांसलर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, श्री अमित अग्रवाल डायरेक्टर जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी जयपुर, डॉक्टर रेवत प्रो प्रेसिडेंट माधव यूनिवर्सिटी अबू रोड, प्रोफेसर डॉक्टर एन कविता दुरयानी राव जवाहरलाल नेहरू आर्किटेक्चर एंड फाइन आर्ट्स यूनिवर्सिटी हैदराबाद, प्रोफेसर राधेश्याम शर्मा फॉर्मर वाइस चांसलर सीडीएलयू सिरसा, डॉक्टर पंडित पालंदे फॉर्मर वाइस चांसलर बिहार यूनिवर्सिटी, श्रीनिवास चंद्र पृष्ठी रजिस्ट्रार नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, प्रोफेसर डॉक्टर जयपाल दुड़ेजा डायरेक्टर अमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लेजर टेक्नोलॉजी एंड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड़गांव, प्रोफेसर कार्तिक जैन वाइस चांसलर राय यूनिवर्सिटी अहमदाबाद. प्लीज कम ऑन द स्टेज फॉर लाइटिंग द लैम्प. हम सभी शुभ संकल्प करेंगे कि सारे विश्व का तमस दूर हो जाए, अज्ञान का अंधकार मिटे, सभी सुख शांति मय जीवन जीने योग्य बने, सहयोग दें इस संसार को सुखमय बनाने. साथ में मैं निवेदन करती हूँ वेद गुलियानी जी हिस्सा, डॉक्टर आरपी गुप्ता जी किरण, किरण बहन भोपाल, सुमन बहन, ममता बहन, सुशीला बहन, पीयूष भाई, हरदीप सिंह, सुदेश बहन दिल्ली, अंजलि बहन हैदराबाद, आप सभी भी मंच पर आए दीप जलाने के लिए.
संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में, शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में, जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में. शुभ संकल्पों के दीप जलाए बदलने वाला राजयोग का मार्ग यही है. सहज सरल निराला, दिव्यता की बन जाए मूरत मंदिर से इस तन में, जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए।
धन्यवाद सभी का। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, इस शुभ मंत्र को हम साथ में रखेंगे। हर आत्मा की ज्योति जगे, परमात्मा पिता परम ज्योति स्वरूप में सभी का कल्याण करे। हम सभी को मालूम ही है और हमारे बच्चों को पढ़ाते भी है, सिखाते ही है कि शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। शुभ करने वाली, आरोग्य देने वाली, सुख संपत्ति देने वाली, शत्रु बुद्धि नाश करने वाली उस परम पिता परमात्मा रूपी ज्योति को हम नमन करते हुए, हम सभी उसके शुभ आशीष लेते हुए उसके मार्गदर्शन में हमारे जीवन को भी धन्य धन्य बनाएंगे, अनेकों के जीवन को भी मार्गदर्शक बनकर श्रेष्ठ बनाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करती हूँ प्रोफेसर वेद प्रकाश जी, फॉर्मर चेयरमैन यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो दिल्ली से आए हैं, दो शब्द हमारे समक्ष रखने के लिए। भ्राता प्रोफेसर वेद प्रकाश जी।
मोस्ट रेस्पेक्टेड राजयोगिनी दादी जानकी जी, राजयोगी श्री बी के निर्वार जी, राजयोगी श्री बी के मृत्युंजय जी, दीदी शुक्ला जी, माय वेरी वैल्यूड फ्रेंड प्रोफेसर जगदीश कुमार वाइस चांसलर ऑफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, अनदर कलीग ऑफ माइन प्रोफेसर पंकज जानी, Dr. Manna, other distinguished members seated on the dais, my dear brothers and sisters sitting off the dais, invited vice chancellors, principals from different institutions of higher learning, Om Shanti. I consider it a matter of great privilege and a very special honor to be with you today, when we are deliberating on a very pertinent subject of value education and spirituality. I would like to compliment and congratulate the organizers of this Vishwavidyalaya for having organized this discourse and invited principals and vice chancellors from different parts of the country. We all know that spiritual dimension of our life is at the pinnacle of the stage of human development. And anything which is at the pinnacle of the development cannot be attained just like that. We have been deliberating on this subject for a very long time, and I would like to share with you that when we ended up with the World War I in 1919, the world leaders had assembled in the city of Geneva, and they were very concerned about the reconstruction of the world. At that point in time, they adopted as many as 32 different resolutions. Of them, one resolution was singularly devoted to education, and it had three assertions. The first one was that we must provide the tools to the natural development to our children. Number two, those who are backward must be supported by individual nation state. And the third, that we must place the youth in a position where from they can lead a decent life and conduct themselves in the creation of a civil and egalitarian society. I would not like to go into the history again. The world was again pushed into the Second World War in 1939, and since then we have been deliberating on this subject. We have set up a gigantic system of school education and university education across the globe. I'm not talking only about the Indian system, which is very large, but I'm talking about the global system. We have been talking about the inculcation and the promotion of values. We have been talking about the empowerment of human beings. But why is it that the world is still searching for universal values? And while the world is still searching for universal values, on the other hand, there is an upsurge of ideologies which are very narrow and which are extremely exclusive, and which is why there is such a great danger with this planet. And the challenge before the humanity today is, how can we reverse this narrow and exclusive ideology? How can we come up with a broad-based education with inclusive development? We are looking towards the universities, because universities are the most enduring organizations in the history of the world. It is the university which has always shown way to the society for the next stage of development and taken the society to higher level of civilization. But why are we, even after 93 long years when we had assembled in 1924 in Geneva, we are still debating this issue of value, education and spirituality? We still are reminding ourselves the clear and call of the father of the nation. When we got independence in 1947, Mahatma Gandhi had said that main asli swaraj tab manunga jab, when we would get rid of poverty, illiteracy and inequalities. It has not happened. Universities and colleges have utterly failed, and I would like to confine my address only to this aspect, because I have come here as a learner. I have come here for the first time, and I'm looking for something which I have not attained in my 65 years of life. The question first which doesn't arise, unfortunately: what are the sources of values? There could be only two sources, according to my limited understanding, wherefrom the values could emanate. The one is the universal perception, and the other one is the constitutional imperatives. I'll be reflecting on them separately. I'll take very little time insofar as universal perception is concerned, because we all are aware of the values which emanate from universal perception. And Usha ji, I was listening a very mesmerized address in the morning, and she had very eloquently reflected on 7 different qualities, commencing from knowledge to power, which does indicate, if I could drive any inference out of her excellent address, then I can safely deduce that there is a hierarchy, there is a cumulativeness. Unless you attain a particular level of knowledge, awareness, you cannot graduate, you cannot transit to the higher order. And which is why Mrityunjayaji has very appropriately chosen this topic, value education and spirituality, not the other way around. Because you cannot attain the ultimate goal unless you internalize the values. Now, there is also a hierarchy in values. Unless we create awareness amongst our children, they cannot have any appreciation for those values. And even appreciation has got different segments. I have an appreciation that we must preserve water. But that appreciation is only at the lowest level. But if I go around and I find in my college or in my university that some water tap is running, and if I close it, I have a little higher level of appreciation for that value. And when I convert it into a mission, like Bahugunaji had converted Chipko movement, had launched Chipko movement, that we would not allow the trees to be cut, and we would hum chipak jayenge unke saath mein, that is the still higher level of appreciation. But inculcation of values does not end up only at the level of awareness and appreciation. It goes even further. It calls for attitude formation. And it doesn't end up there. It goes even further. Then it comes to adjustments. And only then we reach the level of the acquisition of values. Now, values which emanate from universal perception are very generic. We all talk about it very often. We talk about honesty. We talk about dignity. We talk about truth, peace, integrity, humility, love for each other, mutual understanding, and environmental stewardship. But in order to converting this planet into a better place to live in, what is needed is that we need to understand our own culture first. And unless we understand our own culture, we cannot enter into other cultures nor benefit from it. And the Constitution of India, I would not spend more time on the universal perceptions. I would like to talk a little about constitutional imperatives, and there is a reason for that. Agar Bharat Varsh ko saksham aur smart banana hai, to we need to know what are our fundamental duties. They were not enshrined in our constitution until 1976. But when they were enshrined, when they were included under Article 51A, I was carrying out a project in early 80s, and I sent a questionnaire to my illustrious colleagues in different universities and colleges, and I wanted to know that what is that they have provided in their existing curricular provisions which talk about the fundamental duties. I received a letter back, not from one place, but from a number of places, that please do let us know what are our fundamental duties. This was the kind of ignorance of us at that point in time. There are not too many, there are only 11. And you can derive values out of those fundamental rights. The first and the foremost is to abide by the Constitution and respect its ideals. What are those ideals? I think we need to share those ideals with our teachers. And the message that I would like to give to my fellow vice chancellors and the principals of the colleges, to go back, sit together, talk to your teachers, and identify what are those ideals? What are those democratic values which we need to promote? I'm also going to reflect towards the end of my address by citing a very appropriate example that what has been missing, what that is we have not done, which is why we are so concerned and we are saying all the time that we are moving towards the darkness. The second one is to cherish and follow the noble ideals which is inspired our national struggle for freedom. जिसमें हम लोगों ने सुराज की बात की, स्वराज की बात की, जिसमें हम लोगों ने फ्रेटर्निटी की बात की, ह्यूमैनिटी की बात की, लिबर्टी की बात की. टू अपहोल्ड, द थर्ड वन इज टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. वन ऑफ द वैल्यूज इन विच वी कैन टेक ए लिटिल क्लेम इज दिस वन, which is provided for in the fundamental duties, is to defend the country and render national service when called upon to do so. We can say that our forces are diligently and dutifully fulfilling this fundamental duties. The another one is to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic, regional and ethnic diversities. The next one is to value and preserve the rich heritage of our composite culture. What does composite culture mean? Which pervades through all religions, and to protect and improve the natural environment including forests, lakes, wildlife, and to have compassion for living creature, and to safeguard public property and abjure violence. Whenever there is a demonstration, there is a dharna, the first thing which happens, whether it happens on the campus of a university, that we damage the public property, we damage the public transport system on the roads. To the last but one, and which is very important, and that is the example I am going to cite a little while from now, to strive towards excellence in all the spheres of individual and collective activity. We have to excel as an individual human being in all spheres of life, and at the same time we have also to excel as a collective workforce in order to becoming a great nation. Now, education system, education is the only means of inculcating and promoting these values amongst our children. And if it is so, then why these values are not being reflected in every shade of curriculum, commencing from pre-primary up to the research level? Each value cannot be included in each and every constituent unit of our curricular provisions, but as teachers we can certainly identify some such spots in our curricular provisions wherein these values could be inculcated. And I'll give you one example and then I'll close. It was exactly in 1785 when Lord Henry Cavendish thought of ascertaining the composition of the atmospheric air. He carried out an experiment, and first time when he did that experiment he found that the jar was completely filled with water, but there was a little bubble in the corner, 0.5 cc little bubble in the corner of the jar. He couldn't understand the mystery. And then he repeated his experiment, and whilst he was repeating experiment, he again saw the same phenomenon. There was again a little bubble of 0.5 cc in the jar. at the same place. The entire jar was filled with the water. He carried out that experiment 7 times, and every time he saw that small little bubble in the jar. Now he writes a research paper which he published in Philosophical Magazine at that point in time, and he writes, he says, I have to some extent discovered the composition of the atmospheric air. I carried out this experiment 7 times, but I could not understand the mystery of that little bubble of 5.5 cc in the jar. It is beyond my comprehension. I am unable to understand that phenomenon. I am ignorant about it. I am leaving it for the posterity to find out this mystery. The paper was published in Philosophical Magazine. Exactly after 100 years, Ramji thought in 1885, he thought that we must find out the mystery of that little bubble. Ramji carried out the same experiment. He again found the same bubble. He took the help of his fellow colleagues in the lab, and they resolved that mystery, and that changed the shape of the periodic table. He found out that it was an inert gas which was not reacting, as a result of which there was a little bubble. What do we get out of it? The lesson that we get out of it, this was a science experiment. It does tell us the constitutional imperatives of values which I was sharing with you a little while ago, that is, he was striving for excellence. And when he thought that he was not able to achieve the excellence of the highest order, he left it for the collective wisdom of his fellow colleagues. Another value which emanates out of it is the power of perseverance. That we should not give up something which we find harder. His candid admission of his failure when he writes that I am unable to understand. My message to my fellow colleagues of the vice chancellors and the principals would be that when you go back, you sit with your colleagues in different departments, ask them to identify such spots in every subject of study and integrate the values which are enshrined in our constitution. It is a doable thing. We have not attempted it so far, which is why we are still struggling, and we are all the time crying that the world is moving towards darkness, towards blindness. My dear brothers and sisters, I would like to share one thing more with you. There is a book titled The Emperor's Writings by Dirk Collier. There is a lot of research work that gentleman has done. It contains the letters which Akbar had written to his son Jahangir. And Akbar writes that, Jahangir, I know that you are extremely restless. You want to become the king. But you do not know that a king has to conquer himself first before becoming the king. It is all related with value, education and spirituality. Spirituality is the highest goal, but there are stages of development which we need to know, and without knowing them, we cannot attain the highest goal, which is at the pinnacle of the stage of development. He said, Jahangir, I am pained that you are mad after something which I would not like to narrate here. You do not know that people are mad in search of knowledge. You do not know. You are ignorant that those who are in search of knowledge, 99% of them end up at that stage. They do not know that there is also something higher than knowledge, and that is what is called as wisdom. My dear Jahangir, you also do not know that those who acquire wisdom, of them 99.9% people end up at that level. They do not know that there is also something higher than wisdom, and that is what is known as truth. My dear son, I want you to follow those who are mad in search of knowledge. Emulate those who are in search of wisdom, but be wary of those who claim to have found the truth, because truth is the ultimate possession of the Lord. Truth is like a well-chiseled diamond which is one but has got multiple reflections. I would close, because of the paucity of time, though I had come prepared to speak on spirituality as well, but I will not speak. I would continue to be a listener for the next 1.5 days, because I find that this seat of learning is a fantastic seat, and we need to learn a great deal from those who are accomplished people in the field of spirituality. Thank you very much. Om Shanti.
दिव्य गुणों की प्रतिमूर्ति नारी शक्ति का गौरव अध्यात्म जगत की शिरोमणि ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका आदरणीय दादी जानकी जी से अब हम सुनेंगे आशीर्वचन, जिनकी त्याग और तपस्या से इस संस्था की उत्तरोत्तर अभिवृद्धि हो रही है। फिर से जोर से एक बार ताली बजाकर दादी जी का धन्यवाद करेंगे जो हमारे लिए खास यहां तक आए हैं।
मैं तीन बार ओम शांति कहेंगी, मेरे साथ आप भी ओम शांति करेंगे ना? ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अच्छा, मैं कोई पढ़ी लिखी नहीं हूँ एजुकेशन शब्दों का भी मैं नहीं कह सकता हूँ, पर मुझे परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो पराया है, पालना दी है, जो वहां से प्राप्ति हुई है, आपको शेयर थोड़े समय से शेयर करती हूँ। एक बात है मुख्य, हम एजुकेशन विंग में जो सब बाबा बात कर रहे हैं, मैं सुन रही हूँ, समझ भी रही हूँ, पर मैंने जो पढ़ाई पढ़ी है, मैंने ₹5, ₹5 डॉलर खर्च नहीं किया है, न हाथ में रखा है। सारी विश्व की सेवा करने के लिए भगवान ने मुझे भाग्य दी है। भगवान किसको कहते हैं? भगवान मेरा साथी है, ये हाथ से गए भाग्य मेरा ऐसा है। भगवान ने जो माता पिता शिक्षक सखा सतगुरु 5 संबंध में जो सिखाया है, वही जीवन यात्रा लग रहे हैं, बड़ा अच्छा सफल हुआ है। उसमें भी चार वैल्यू मैं समझती हूँ, बहुत वैल्यू तो बहुत है, बहुत गुण संपन्न बनना है, पर ये चार वैल्यू में जैसे सब गुण आ जाते हैं, उनका कोई अभिमान नहीं है। अभिमान सबसे बड़ा नुकसान का है। तो पहले तो निराकारी स्थिति, जैसा मेरा परमात्मा बाप है, फिर निर्विकारी, कोई मेरे अंदर विकार, कोई भी विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, कोई विकार मेरे में न हो, निर्विकारी रहना और निरहंकारी अहंकार कुछ होता क्या रखे। भले 40 साल विदेश सेवा में बाबा ने हमारे से सेवा कराने के निमित्त बनाया, वो भी भारत में यहाँ नीचे हमारा जो क्या ठीक है नीचे में रहती हूँ, मुझे बताया ऊपर आएंगी, हाँ तो देख करके बड़ी खुशी हुई है। फिर तुझे भाई ने तो मैं आएंगी। अच्छा, चार वैल्यू मैं समझती हूँ। योग ध्यान पर है तो बहुत अच्छा मैंने अनुभव किया है। जहाँ जहाँ भारत के भी मुख्य क्षेत्र में गई होंगी तो पहला बात है हारमोनी। ये मैं मॉरीशस में गई थी, वहाँ का गवर्नर मेरे साथ बैठा था, तो मुझे हारमोनी अक्षर का भी पूरा अर्थ का पता नहीं था, पर मैंने कहा मैं तो समझे हार मानी झगड़ा टूटा, समझा ताली दो जो ना हार मानी। मैं जिद कभी सारी लाइफ में कभी जिद नहीं किया, मैं राइट हूँ, ये बात अच्छी तरह से सबको समझाऊं। अभी जब मैंने अंगुली ये की ना तो पांच अंगुली बराबर नहीं है, ये छोटी है ये मोटी है, देखा कहती है तो ये बेचारी या है और ये या है, पर ये संयोग बहुत देती है छोटी, पर इसके संयोग से आप सब यहाँ हाजिर है। ये एक बहुत अच्छी है, ये टीका देने में बिल्कुल टीके बीच में, तो मैं तीन बारी ओम शांति किया ना, मैं कौन मेरा कौन, अब मुझे क्या करने का है। तो पांच अंगुली से सीखते हैं, पांच अंगुली भी अच्छी यूज करे, ये है विजडम। पर ये एक है ना तो चार ही ठीक है। एक कौन है, सर्वशक्तिवान परमात्मा बाप, जो शिक्षक भी है सतगुरु भी है माँ भी है तो बाप भी है, मुख्य बात सखा है, सखा रूप में बहुत सिखाता है, कोई भी बात का वो हमको मेहनत नहीं करनी पड़ी है, सिर्फ प्रेम से सच्चाई और प्रेम से सारी जिंदगी इतनी अच्छी सफल हुई है। और खुश रहना मुझे अनुभव नहीं है, नाराज कैसे हो, न मेरे से कोई नाराज हो गए न मैं किसे नाराज हूँ। ये लाइफ लाइफ जीने हैं, वैल्यू है लाइफ की, तो कभी भी किसी हालत में भी कभी जो मुझे जानते हैं कभी भी मैंने ये नहीं कहा आज मुझे इस बात का थोड़ा अच्छा नहीं लगा, सो जो हुआ सो अच्छा, जो हो रहा है तो अच्छा, जो होगा तो अच्छा, गारंटी है, क्योंकि सच्ची भावना है ना, तो भावना अच्छी तरह से काम करती है। दिल में भावना में कोई भी मतभेद नहीं है, सभी धर्म भेद रक्त भेद रंग भेद भाषा भेद, मेरे को बाबा ने ऐसा सिखाया है, सभी धर्म वालों से मुलाकात हुई होगी, पता नहीं भाषा मेरी हिंदी अंग्रेजी नहीं जानती हूँ, तो मैं अच्छी तरह अंग्रेजी बोलूँ नहीं, तो परंतु कहेंगे तेरी बात को समझते, मैं कैसे समझा, हाँ 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 समझा समझा, ये भगवान की मेहरबानी है, जो भावना है ना, भावना से अच्छी जो भावना, कल्याण भावना, अपने लाइफ में भी मुझे कल्याणकारी बाप मिला है, शिव कल्याणकारी है, ब्रह्मा बाबा हमको अपना एडॉप्ट करके अपना जीवन मेरी सफली कर दी, जो मन वाणी कर्म वो भी अच्छा से, मन संकल्प वाणी मुख से, कर्म भी क्या करना है, सब अच्छी तरह से कराने वाला करा रहा है, ये सब मेरे भाई बहन इतनी सेवाएं कर करके आगे मेरा मीठा बाबा ब्रह्मा बाबा जब थे तो 100-150 बचे थे, पर जब अव्यक्त हुआ है हजारों लाखों हो गए हैं। कितनी कमाल है सच्चाई और प्रेम की, रूहानियत की, तो हैप्पीनेस खुशी जो है ना, कभी भी खुशी जैसी खोराक नहीं, चिंता जैसा मर्ज नहीं, तो चिंता करना हमारा धर्म नहीं है, अच्छे चिंतन में रहना, शुभ चिंतन में रहना, सबके लिए भलाई सोचना, ये हमारा फर्ज कहता है। और कुछ है नहीं, शुगर का तो ध्यान रख रहा ही है, पर मीठा जबान ऐसी हो जो एक बारी भी हम ऐसे मुस्कुरा के, मेरे भाई मेरी बहन, मेरी बहन को आज मैं देख रही हूँ, वंडरफुल है, आज देख रही हूँ सबको कितना अच्छा है। ये शुक्ला भाई जी, शुक्ला तो आज से देख रहे हैं, ये आज दीदी बन गए, तो परंतु तो हैप्पीनेस से शुक्ला बहन से पूछेंगे तो इतना अच्छी जी निर्वेर भाई को भी कितने साल से जानती हूँ, और बाकी मैंने देखा है कोई बाबा ने मुझे 13 साल यहाँ पाकिस्तान से आ रहे थे तो नर्स बनाया था, सारे जगह में सबका संभाल करना, एक वाली डॉक्टर को नहीं बुलाया, बाबा ने एक ही शिक्षा थी, पेशेंट की जैसे शिक्षा है तुम्हारी शिक्र क्यों हुई है, मैंने बाबा इस बेचारे को कहा तुम्हारी शिक्र ऐसी क्यों हुई है, तभी से लेकर के कोई को भी दुखी तकलीफ देखो तो पेशेंट धीरज धीरे धर्मनवा सुख के दिन आएंगे, धीरज एक अच्छी ऐसी चीज है जो मीठा बनाती है हार्मनी से, समय पर जिसको जो साथ चाहिए देने के लिए हाजिर है। थैंक यू, ओम शांति, ओम शांति, 3 बारी ओम शांति का मतलब भी ये है, मैं कौन हूँ, अंगुली ऐसे, ये अंगुली मेरा कौन है, मैं हूँ आत्मा, मेरा है परमात्मा, अभी मैं आत्मा हूँ तो कोई भी देह का संबंधी मुझे याद नहीं है, कौन थे क्या थे, अभी आपके साथ भी देह का संबंध नहीं है, रूहानी कनेक्शन है, मैं आत्मा हूँ, मेरे बाबा के बच्चे हो सभी, आपका मेरा आशा सही है, सब ठीक है, 5 अगली बराबर नहीं है पर अच्छा टाइम पर काम फर्स्ट क्लास कर देती, इसको साथ देखेंगे दृढ़ संकल्प से श्रेष्ठ काम करना ये हमारा फर्ज कहता है। एक थैंक यू, ओम शांति, ओम शांति। मैंने 3 साल स्कूल पढ़ा है, मैं एजुकेशन शब्द को भी नहीं समझती हूँ, परंतु ठीक है जो भगवान ने पढ़ा है वो आप सबके सामने जीवन जीने की कला सिखाई है, जीवन जीना है तो कैसे, सिंपल सच्चाई, सच्चाई सफाई सादगी, ऐसे जीवन जीना हो ना, बिल्कुल बेफिक्र बच्चा, कोई फिक्र नहीं, कोई ना परी चिंता है, न भाई बहन, सब भाई बहन अच्छे, अपन को सेवा भी कर रहे हैं, चारों शब्द पे ध्यान दे रहे हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा, 4 सब्जेक्ट पे हर एक ध्यान दे रहे हैं, चार शब्द मैं कहती हूँ ध्यान देने के लिए, नियम और मर्यादा, ये भी दो एडिशन करनी चाहिए। नियम पर चलना, टाइम को सफल करना, ये भी एक भगवान का है। भगवान का समय की पहचान रखो, सही समय बहुत वैल्यूबल है। जो चाहे एक परमात्मा को अपना बना करके भविष्य पर 21 जन्म के लिए सफलता कर ली। ओके, ओम शांति, ओम शांति।
आदरणीय दादी जी ने थोड़े ही शब्दों में जीवन के वैल्यू को बढ़ाने का, वैल्यू बेस्ड सोसाइटी का निर्माण करने का, एक मूल्याधारित जीवन पद्धति के लिए शुभ प्रेरणाएं दी। तो आप सब की ओर से मैं आदरणीय दादी जी का धन्यवाद करती हूँ। आप भी धन्यवाद। अभी मैं निवेदन करती हूँ प्रोफेसर एम जगदीश कुमार जी, वाइस चांसलर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, अपने दो शब्द प्रस्तुत करें।
दादी जी, शुक्ला दीदी जी एंड माय लर्न्ड कोलीग्स ऑन द डायस, फ्रेंड्स, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव विजिटेड माउंट अबू एंड द मोर आई लर्न अबाउट ब्रह्मा कुमारीज आई फील मोर ब्लेस्ड, आई फील प्रिविलेज्ड टू बी हियर। We are discussing about the importance of values, and several speakers have already spoken. Whichever words, sentences and expressions we may use, all our objective is only one. We want to build a society which is sustainable, inclusive and peaceful. But we know that in the last 30 to 50 years or so, our society, human society, has undergone significant changes. Experts say that since the beginning of human race, human societies have undergone such changes only twice or thrice. And we are in the middle of one such significant transformational cycle. You know that the breakthroughs in genetics, physics, information technology, they are affecting our lives. Today, technology drives the economies of the world. We have also observed a profound demographic shift in terms of falling birth rate, reduced life expectancy, increased life expectancy, aging societies and so on. Today, we have also observed the financial and economic systems becoming unstable, bringing more inequalities between poor and rich, between developed and underdeveloped regions, between educated and uneducated and so on. Our lives are also becoming more dependent on fossil fuels, which are rapidly declining. Our lifestyles have become so unsustainable that we are causing irreparable damage to the environmental systems. Today, we face the biggest challenges human race has ever faced. We heard about climate change, the reduced biodiversity, the reduced fertility of the soils, the introduction of poisonous chemicals in our food cycle and so on. Human societies across the world are suffering from various diseases, be it heart diseases, diabetes, BP, anxiety, addiction and so on. I think time has come for us. We cannot go on with business as usual attitude. Today, of course, there is consensus among policy makers and intellectuals that we need to innovate, we need to do more research, and we need to be lifelong learners if we want to build a sustainable world. But unfortunately, innovating more and more in a linear way is not going to help us in overcoming the challenges that we face today. In fact, we should be focusing more on the quality of life rather than the standard of living. We should be focusing more on the spiritual development rather than just the material security. We should be looking at more about the relational care than the mindless competition. there must be more cultural diversity. We must respect cultural diversity than identity politics. We must protect our environment than mindlessly exploiting it. We should focus on social justice than dominance. But why is that? In our rapidly technology-driven living, we are not looking at these issues. Why is that the importance of values and ethics in our lives is not taken seriously? I think all of us have joined today here to discuss those issues. There are several speakers before me who mentioned various ways of bringing these values back into our lives. Whichever approach you use, each one of us should play a role in bringing back values and ethics into our lives. Let me recollect what Gandhiji has said. He said, whatever you do in your life may become insignificant, but the important thing is you do it. Today, let us, all of us, take this oath that each of us as an individual, we will play our role in building a sustainable and equitable and peaceful society. Thank you very much.
धन्यवाद ब्राता जी का. बहुत सुंदर विचार, बहुत सुंदर प्रतिज्ञा अपने आप से करने के लिए हमें प्रेरणा दी. क्योंकि हम सभी जानते हैं एजुकेशन शब्द में ही बहुत सारे वैल्यूज हैं. ई स्टैंड्स फॉर एटिक्विटी, डी फॉर डिसिप्लिन, यू फॉर यूनिवर्सल ब्रदरहुड, सी फॉर क्रिएटिविटी, ए फॉर अवेयरनेस, टी फॉर टॉलरेंस, आई फॉर इंटीग्रिटी, ओ फॉर ऑप्टिमिज्म, N for nobility. अगर हमारे अंदर इन values का inculcation होता है तो surely we are fit to say we are educated. आज के दिन इस शुभ अवसर पर हम सभी प्रतिज्ञा करेंगे अपने आप से भगवान के सामने कि हम इन मूल्यों को जीवन में धारण करेंगे, मूल्य आधारित जीवन जिएंगे. व्यक्ति व्यक्ति के परिवर्तन से अवश्य ही यह समाज मूल्य आधारित होगा जरूर. धन्यवाद भ्राता जगदीश कुमार जी. अभी मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय भ्राता निर्वार जी से, जो इस संस्था के जनरल सेक्रेटरी हैं, इस एजुकेशन विंग के आप चेयरमैन भी हैं. बहुत ही सरल शब्द में हम आपका परिचय दे तो एक हाथी को आईने में दिखाने जैसा है. एक शब्द बहुत छोटा पड़ता है, जितना भी हम लंबा आपका परिचय दे वो छोटा ही होता है. फिर भी सिंपल शब्द में हम कहें, जो नाम है इनका निर्वैर, वैसी ही उनकी स्थिति है, वैसा ही उनका सभ्य व्यवहार है. तो हम सभी भाग्यशाली हैं इस एजुकेशन विंग के सदस्य तथा सभी सपोर्टर्स कि ऐसे एक चेयरमैन, ऐसे एक अध्यक्ष के नेतृत्व में यह प्रभाग दिनों दिन उत्तरोत्तर अभिवृद्धि प्राप्त कर रही है. तो आप सबकी ओर से मैं निवेदन करती हूँ भ्राता निर्वैर जी.
ओम शांति. परम प्रिय परम पिता परमात्मा की प्रिय संतानों, प्रिय बहनों और भाइयों, विशेष रूप से हमारी परम आदरणीय दादी जानकी जी, प्रोफेसर वेद प्रकाश जी, प्रोफेसर एम जगदीश कुमार जी, प्रोफेसर पंकज जानी जी, बहन शुक्ला दीदी जी, डॉक्टर मनप्रीत सिंह जी, प्रोफेसर एस ए कोरी जी, भ्राता डॉक्टर बी के पंड्यामणि जी, डॉक्टर बी के हरीश शुक्ल जी, तथा आप सभी वाइस चांसलर्स, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, सबसे पहले आप सबको बधाई दे रहा हूं। आप सोचेंगे किस बात की बधाई? बधाई आज मैं समझता हूं आज के सेशन के बाद हरेक अपने अंदर कुछ विचार करेंगे टू मेक न्यू बिगिनिंग्स, कुछ नयापन आना चाहिए जीवन के अंदर। बहुत ध्यान से पूर्ववक्ताओं के प्रवचन सुन रहा था और बहुत उसमें गहराइयां थी, समुद्र से भी ज्यादा गहराई थी, आकाश से भी ज्यादा ऊंचाई थी। अब एक बात, पहला संकल्प आता है वैल्यूज, क्या सिर्फ स्टूडेंट्स के अंदर आनी चाहिए या समाज के अंदर आनी चाहिए या हम सब के अंदर आनी चाहिए? दिस इज माय क्वेश्चन। अगर हम दूसरों के अंदर वैल्यूज को लाना चाहते हैं तो मैं समझता हूं वी हैव टू बिकम एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल सबसे बड़ा प्रिसेप्ट है। अगर हम हर वैल्यू को अपने जीवन में धारण करते हैं, उसकी वैल्यू समझ करके, तो मैं समझता हूं वी कैन बिकम लिविंग एक्टिव टीचर्स। और उसके लिए मुझे सामने आते हैं कुछ पर्सनैलिटीज। गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी और पिताश्री ब्रह्मा बाबा। गांधी जी और टैगोर जी, टैगोर जी को मैंने देखा नहीं, गांधी जी को देखा और उनकी पुस्तकों से जो मैंने पाया, और पिताश्री ब्रह्मा बाबा को अपने इन नैनों से सिर्फ देखा नहीं बल्कि 10 साल उनके साथ बिताए। इन तीन पर्सनैलिटीज ने मुझे बहुत बहुत कुछ सिखाया। मैं कहूं मैं समझता हूं आप सबको इस बात का बड़ा गौरव होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर जी को क्या प्राप्त हुआ था, है किसी को ख्याल में क्या प्राप्ति हुई थी? जी नोबेल पीस प्राइज। किस बात के लिए लिया था उनको? जी गीतांजलि के लिए। आप में से जिन्होंने गीतांजलि पढ़ी है या ध्यान से अध्ययन किया, जरा हाथ खड़ा करें। एक, दो, बस। हाउ आई विश यू हैड रेड दैट। मैंने एक बार पढ़ी पहले, वो पढ़ते पढ़ते हुए इतना मैं उसमें खो गया, मुझे जब मौका मिलता है, जब समय मिलता है, मैं वो गीतांजलि लेकर के पढ़ना शुरू करता हूं। 6 बार पढ़ चुका हूं। कारण, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जीवन यात्रा को सामने रखते हुए आज से अंतिम समय तक की यात्रा और उसमें सारी यात्रा वैल्यूज पर आधारित, मूल्यों पर आधारित और साथ में संगीत जो उनको बहुत प्रिय था, उनके बारे में और अधिक आप सब जानते ही होंगे, नहीं तो पढ़ लेना। गांधी जी के बारे में, गांधी जी की आस्था सभी जानते हैं जी, किसमें? गांधी जी की आस्था, कौन सा मंत्र था उनका? रघुपति राघव राजा राम, राम को जपने का उनका था। और उनके साथ में उनके कुछ ऐसे प्रिंसिपल, ऐसे असूल थे कि जब तक वो स्वयं कोई बात को प्रैक्टिस नहीं करते तब तक वो दूसरे को नहीं कहते थे। छोटी सी कहानी है, एक माता जी अपने बच्चे को उनके पास ले गई थी कि बापू इनको गुड़ खाने की बहुत आदत है, इनको आप मना करो क्योंकि इसके कारण इसका पेट खराब हो जाता है, इसकी तबीयत खराब हो जाती है। तो बापू ने कहा ठीक है, एक हफ्ते के बाद मैं इनसे बात करूंगा। एक हफ्ते के बाद जब माता जी फिर बच्चे को साथ लेके आई तब बापू जी ने कहा बेटा गुड़ नहीं खाना है, ज्यादा नहीं खाना है, वो तबीयत के लिए अच्छा नहीं है। तो माता जी हैरान हो गई कि ये बात तो बापू एक हफ्ता पहले भी कह सकते थे, आज कह रहे हैं, रहा नहीं गया। पूछा उन्होंने तो बापू का क्या जवाब था कि जब तक मैं स्वयं इसको अपने प्रैक्टिस में नहीं ले आता तब तक मैं बच्चे को भी कहने का अधिकारी नहीं हूं। मैंने 7 दिन से गुड़ नहीं खाया तो मैं आज इस बच्चे को कहने का अधिकारी हूं। तीसरी मिसाल ब्रह्मा बाबा की, ये कंटेम्परेरीज हैं इसलिए मैं तीनों का नाम ले रहा हूं, क्योंकि जब रविंद्रनाथ टैगोर जी थे उसी टाइम पर गांधी जी भी थे और उसी टाइम पर ब्रह्मा बाबा भी थे। ब्रह्मा बाबा एक बहुत नामी ग्रामी ज्वेलर थे जिनका कनेक्शन राजाओं महाराजाओं के साथ, लेकिन उनको इस बात की खोज थी स्वयं को जानने की, परमात्मा को जानने की, परमात्मा के साथ अपने संबंध को जानने की, और इस खोज में उन्होंने गीता का अध्ययन किया, बहुत अध्ययन किया गीता का और ग्रंथ साहिब का अध्ययन किया, गुरबाणी का अध्ययन किया, करते करते उनको दिव्य साक्षात्कार हुए और दिव्य साक्षात्कार होने के फलस्वरूप परमात्मा वास्तव में कौन है, उनका स्वरूप क्या है, उनके गुण क्या हैं, उनका कर्तव्य क्या है और वो किस समय इस धरा पर आते हैं, श्रीमद् भागवत गीता में बहुत क्लियर है, सब जानते हैं कि जब अधर्म होता है, धर्म की गिलानी होती है, तो सत धर्म की स्थापना और अधर्म विनाश के लिए स्वयं अवतरित होते हैं। तो आप सब से पूछना चाहता हूं, आपने जो अभी तक लेक्चर सुने या स्वयं की ऑब्जर्वेशन आपकी डेली लाइफ की है, चाहे आपकी आंखों देखी है, चाहे आप टीवी से देखते हैं, चाहे न्यूज़पेपर से देखते हैं, माई क्वेश्चन इज देयर इरिलीजियसनेस अनराइटियसनेस इन द सोसाइटी और नॉट? है, जो समझते हैं इरिलीजियसनेस है, अनराइटियसनेस है, जरा हाथ खड़ा करें। थोड़े से जो समझते हैं राइटियसनेस है बहुत सोसाइटी के अंदर, वो हाथ खड़ा करें। रिलीजियसनेस है? नहीं। सो लेट अस रिटर्न टू द बेसिक्स। जब तक हम बेसिक्स की तरफ नहीं जाएंगे, तब तक कितनी बड़ी आप इमारत बनाना चाहें, वो रेती के ढेर पर बनेगी और गिर जाएगी। इच्छा सबकी होती है, देश आगे आए, देश नंबर वन हो, और हम भी यही सुनते आए हैं। पिताश्री जी के द्वारा भी यही सुना कि भारत सब देशों में महान देश है। आप जाएंगे पांडव भवन में, वहां टावर ऑफ पीस, पिताश्री जी के जीवन से संबंधित कुछ बातें लिखी हैं, उसमें खास लिखा हुआ है भारत सब देशों में महान देश है। किस बात के लिए? सिर्फ गीता ज्ञान के लिए नहीं, पर गीता ज्ञान मिला किस लिए था? मनुष्य को देवता बनाने के लिए। आप रिसर्च के द्वारा, जो हिस्टोरिकल रिसर्च करते होंगे, जानते होंगे, जानते हैं 2500 साल पुरानी हिस्ट्री आपको मिलती है, इसके आगे की हिस्ट्री नहीं है आपके पास। और उससे आगे की बात है जो मिथोलॉजिकल स्टोरीज में आती है, जिसको हमने स्वीकार किया हुआ है कि आज से 5000 साल पहले महाभारत काल था। महाभारत काल जब था, उसी समय श्रीमद् भागवत गीता उच्चारित हुई थी। आज फिर से 5000 वर्ष के बाद वो ही बातें आपके सामने हैं, जो महाभारत के अंदर वेपन्स का वर्णन है, फोर्सेस का वर्णन है, जिस तरह की उनकी बातें हैं, वो आज आपके सामने इस धरा पर प्रैक्टिकल में हैं। और कितना टाइम और लगेगा इसको, महाभारत काल को रिपीट होने में, मेरे से ज्यादा आप जानते हैं। वो क्लॉक को बार बार वापस लाते हैं, एक मिनट बाकी है, दो मिनट बाकी है, फिर वापस करते हैं। तो फिर से परम पिता परमात्मा न सिर्फ वैल्यूज बल्कि स्पिरिचुअलिटी भी हमको सिखा रहे हैं, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ विद्या जो है वो आध्यात्मिकता है। क्यों सबसे श्रेष्ठ है? जो मनुष्य के अंदर वैल्यूज लाना चाहते हैं, वो ईश्वरी विद्या मनुष्य को देवता बनाती है, जिसका वर्णन गुरबाणी के अंदर आता है, मानुष ते देवता किए करत न लागे वार। तो ये बात हम लोगों को थोड़ा, अब आप आए हैं ब्रह्मा कुमारी, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में, ये भी अपने प्रकार की स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है, द ओनली यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी ऑफ इट्स ओन काइंड, इसके जैसी दुनिया में और कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। आप पूछेंगे क्यों? दो शब्दों में यही कहूंगा, दिस इज द पाथ ऑफ विजडम। इससे भी आगे जाने की जो बात सुनी आपने, वो भी इसके अंदर जब अभ्यास करते हैं तो आती है, सिक्स सेंस की भी बात आती है। लेकिन ये आध्यात्मिक ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा, सहज राजयोग के द्वारा, दिव्य गुणों की धारणा के द्वारा मनुष्य को देवता बनाने की यूनिवर्सिटी है। ऐसी कोई यूनिवर्सिटी दुनिया में नहीं है जहां मनुष्य को देवता बनाते हो। मनुष्य को इंजीनियर बनाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, व्यापार सिखाते हैं, एग्रीकल्चर सिखाते हैं, पर कोई यूनिवर्सिटी, वो सब होते हुए भी उनमें ये ईश्वरीपन आ जाए, ईश्वरी गुण आ जाए, वो देवता स्वरूप बन जाए, हम भारतवासियों के पास एक विशेष आज दिन तक निशानी चली आती है। जब शादी होती है उस समय लड़की को किस स्वरूप में सजा करके घर लाते हैं, ससुराल में किस स्वरूप में आती है, याद है आपको? आप शादीशुदा हैं मोस्टली, किस स्वरूप में लेके आए थे प्रोफेसर्स? श्री लक्ष्मी के रूप में। तो श्री लक्ष्मी किसके घर में आएगी? श्री नारायण के। नारायण नहीं सिर्फ, नारायण तो आजकल भी बहुत है, श्री नारायण के घर में श्री लक्ष्मी आई। पर कितने दिन तक श्री लक्ष्मी श्री नारायण के रूप में एक दो को देखा? फिर से परमात्मा पिता, परमात्मा शिव, ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम बच्चों को यही शिक्षा दे रहे हैं कि आप परमात्मा पिता की संतान हो। कहा जाता है गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज। उनका इमेज क्या है? तो इस सृष्टि पर चलने वाला इमेज है नर से श्री नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी, और उनका बचपन है श्री राधे कृष्ण। इस बात को थोड़ा गहराई से जब हम सोचते हैं, इस पर विचार करते हैं, तो फिर वैल्यूज और स्पिरिचुअलिटी बहुत अच्छी तरह अध्ययन करने का मन होता है। एक दिन की नहीं, दादी जी ने कितना टाइम से अध्ययन किया है, कितना टाइम से प्रैक्टिस की है, सुना है आपने? 80 साल से ऊपर हो गए, 80 इयर्स दादी, सबसे पुराने स्टूडेंट आप हैं, 80 साल पुराने स्टूडेंट जी।
हाँ
जी जी
जी, पता भी नहीं। वो
दादी अपनी स्टोरी सुना रही है, इनके लौकिक पिताजी ब्रह्मा बाबा के पास इनको ले गए, उनको देखते ही वो अनुभव हो गया, साक्षात्कार हो गया कि ये ही मेरा अलौकिक बाबा है। खैर, उस अलौकिक बाबा ने आपको इतने लायक बना दिया जो आप सारी दुनिया के मालिक हैं। तो दादी जी की, हम सब की एक ही इच्छा है कि हमारे सभी भाई बहनें इस बात को रिकॉग्नाइज करें, रीडिस्कवर करें, और फिर उसको री इनकल्केट करें कि स्पिरिचुअल वैल्यूज और डिवाइन वर्चूज हमारे जीवन का ओरिजिनल स्वरूप है। आप देखेंगे जो इसके विपरीत है, नेगेटिविटीज हैं, उसमें आप सदा नहीं रह सकते। किसी को गुस्सा आता है, कितना टाइम गुस्सा करते हैं, फिर पश्चाताप होता है। हाँ, ईगो के वश कोई ऐसी बात हो जाती है, कितना टाइम चलती है, फिर पश्चाताप करते हैं। तो जो पश्चाताप कराने वाली बातें हैं उनका त्याग, और जो ईश्वरीपन की बातें हैं जो आपको अंदर का सुख देती हैं, आत्मिक सुख देती हैं, उसको हम जीवन में धारण करने का संकल्प लें, तो आप देखेंगे ये भारत फिर से श्री लक्ष्मी श्री नारायण का या श्री राधे कृष्ण का वैकुंठ बन जाएगा। उस वैकुंठ बनाने में हम सबको उस ईश्वर पिता को सहयोग देना है, अपने लिए भी देना है, दूसरों के लिए भी देना है। तो मे यू बी एवर हैप्पी, एवर होली एंड एवर हेल्दी। ओम शांति।
धन्यवाद भ्राता निर्वैर जी का। कार्यक्रम के अंत में हम सभी को आशीर्वाद मिला, मे यू बी हैप्पी एवर हैप्पी एवर हेल्दी एवर वेल्दी। हम सभी का भी यही शुभकामना है कि आप सभी को सर्वशक्तिवान बाप आयु आरोग्य दे, सुख सुविधा दे, यश कीर्ति दे, सदा सफलता दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम इस सत्र के अंतिम चरण वोट ऑफ थैंक्स धन्यवाद के लिए निवेदन करते हैं भ्राता महरचंद जी को, साथ साथ में हमारे मंच पर उपस्थित हमारे अतिथियों का सम्मान करने के लिए, हमारे दिल से शुभ भावना शुभकामना देने के लिए आपका भी सहयोग चाहते हैं। प्लीज 5 मिनट और आप सभी बैठे रहेंगे। भ्राता महरचंद जी,
ओम शांति। तू अपने को कण ना समझ, तू अपने को कण ना समझ, तू पर्वत हिला सकता है, तू चाहे तो तेरा ये सहयोग धरा पर स्वर्ग ला सकता है, धरा पर स्वर्ग ला सकता है। आज की संदर्भ में परमादरणीय दादी जानकी जी, जो के चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी, हमारे दैवी भ्राता निर्वैर जी, सेक्रेटरी जनरल ब्रह्मा कुमारी एंड चेयरपर्सन एजुकेशन विंग ब्रह्मा कुमारी शुक्ला दीदी जी, हमारे आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर जगदीश कुमार जी, प्रोफेसर वेद प्रकाश जी, प्रोफेसर पंकज जी और प्रोफेसर एस ए कोरी जी तथा सब में उपस्थित प्यारे भाई और बहन, शिक्षा का उद्देश्य कोई डिग्री प्राप्त करना नहीं, नहीं कोई पद प्रतिष्ठा प्राप्त करना है। वास्तव में शिक्षा का उद्देश्य है कि हम अपनी पार्श्विक वृत्तियों का हनन कर एक चरित्रवान नागरिक बनकर समूचे राष्ट्र को अपनी दिव्य ऊर्जा से प्रभावित करें और मानवता के लिए एक ऐसे प्रेरणा स्रोत बने जिनको युग युगांतर तक याद किया जाए, जैसे महात्मा गांधी जी थे, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, पिता श्री ब्रह्मा। शिक्षा का यही एक लक्ष्य है। मैं हमारे बीच में परमादरणीय दादी जानकी जी, उनका जो कि चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी, उनके बारे आपने बहुत कुछ सुना। दादी जी का परिचय सभी को मालूम है, एक आध्यात्मिक जगत की शिरोमणि है और दादी जी को एक स्टेबल माइंड वुमेन के नाम से जाना जाता है। दादी जी जैसे पीपल का वृक्ष 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, ऐसे दादी जी भी अपने प्रकंपनों से, वाइब्रेशन से इस संसार को 24 घंटे पवित्र कर रही हैं। महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि गीता में क्या लिखा है वो मेरे जीवन से देखा जा सकता है। शिव बाबा जो ज्ञान हम बच्चों को दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं वो दादी जी के जीवन से देखा जा सकता है।
प्यार को पिरो